डॉक्टर टेड हिल्डेब्रांट, ओटी इतिहास, साहित्य और धर्मशास्त्र, व्याख्यान 23 2020। डॉक्टर टेड हिल्डेब्रांट यह डॉक्टर टेड हिल्डेब्रांट हैं जो अपने पुराने नियम के इतिहास, साहित्य और धर्मशास्त्र पाठ्यक्रम व्याख्यान 23 में एक सैमुअल की पुस्तक, शाउल के निधन और राजा डेविड की प्रारंभिक कहानियों पर चर्चा कर रहे हैं। ये प्रश्नोत्तरी पूर्वावलोकन 00046। क्लास, हम शुरुआत क्यों नहीं करते? हमें आज ऑडियो स्पीकर वापस मिल गया है। थैंक्स गिविंग से वापस आने पर आपका स्वागत है और मुझे आशा है कि आपने दोस्तों और परिवार के साथ एक अच्छा थैंक्स गिविंग समय बिताया और अच्छा समय बिताया। शायद मेरी तरह तुम भी थककर वापस आते हो। तो अब हमारे पास स्कूल के 2 सप्ताह बचे हैं। मुझे लगता है शुक्रवार पढ़ने का दिन है ना? इस कक्षा के साथ कुछ बातें। वैसे गुरुवार को हमारे पास एक प्रश्नोत्तरी है। ऑनलाइन सूचीबद्ध प्रश्नोत्तरी सामग्री से जाएं। मुझे बस इसके माध्यम से चलने दो। वहां पर उपदेशात्मक स्तोत्रों पर एक लेख है। कुछ स्तोत्र हैं जिन्हें अनिवार्य स्तोत्र कहा जाता है। वे ऐसे हैं जो कहते हैं वे आपके बच्चे को चट्टानों पर गिरा सकते हैं, कोई आपके जबड़े में हमला कर सकता है और आपका सिर तोड़ सकता है, इस तरह की बात। वे उपदेशात्मक स्तोत्र हैं। जॉन डे उन उपदेशात्मक भजनों को कैसे समझें, इस पर एक लेख लिखते हैं। मुझे लगता है कि यह समझने की दृष्टि से सहायक होगा। अय्यूब की एक स्मृति कविता है। फिर चयनित स्तोत्र, अधिकांश स्तोत्र जो आप पढ़ने जा रहे हैं उनसे आप परिचित होंगे। फिर एज्रा, नहेमायाह और एस्तेर, लेकिन एज्रा में केवल चुनिंदा अध्याय हैं। नहेमायाह में भी केवल चुनिंदा अध्याय ही हैं। मैं चाहूंगा कि आप एस्तेर की पूरी किताब पढ़े। यह उतना बड़ा नहीं है। कहानी को प्रवाहमय बनाने के लिए आपको एस्तेर की पूरी किताब की आवश्यकता है। तो एज्रा के चयनित भाग, नहेमायाह के चयनित भाग और एस्तेर के लिए पूरी बात पढ़े। फिर लेख और स्मृति पद्य और चुनिंदा स्तोत्र हैं। तो यह बहुत बुरा नहीं होना चाहिए। उन पाठन के साथ यह एक दिलचस्प सप्ताह होना चाहिए। दूसरी बात, यदि आप में से कोई अतिरिक्त क्रेडिट ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है तो वे सभी गुरुवार को दे होंगे। वह एक कठिन तारीख है। यदि आप उन्हें तब तक अंदर नहीं लाते हैं तो आप उन्हें अंदर नहीं लाते हैं। इसलिए यह एक कठिन तारीख है। आपको इसे गुरुवार तक अंदर लाना है। आपके पास इस पर काम करने के लिए सभी सेमेस्टर थे, इसलिए बस इतना ही। मुझे गुरुवार तक वे सभी मिल जाने हैं। दूसरी बात यह है कि आप में से कुछ लोग हमारे अद्भुत मंगलवार प्रश्नोत्तरी के लिए थैंक्स गिविंग पर यहाँ नहीं थे। आपने बाहर उड़ान भरी या जो भी हो, और उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छा समय बिताया। मैं इस कक्षा के बाद यहीं रुकूंगा। कक्षा लगभग 4:30 पर समाप्त होती है। मुझे लोगों से बात करने के लिए 5 मिनट का समय दें और कक्षा के अंत में चीजों को सुलझा लें, और फिर यदि कोई 4:35 पर रुकना चाहता है तो हम यहाँ प्रश्नोत्तरी करेंगे। यदि आप यहाँ प्रश्नोत्तरी नहीं करना चाहते हैं तो आप मेरे कार्यालय आ सकते हैं। मैं कल बुधवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक फ्रॉस्ट 304 में रहूंगा, चैपल समय को छोड़कर। मुझे चैपल समय पर एक बैठक मिली है। संकाय बैठकें लोग याक और याक पसंद करते हैं। मुझे खेद है, लेकिन बैठकें कभी कभी खत्म हो जाती हैं। इसलिए यदि आप चैपल से वापस आते हैं तो मुझे कुछ मिनट का समय दें। कभी कभी बैठकें कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाती हैं, लेकिन मैं तुरंत बाद वापस आऊंगा। लेकिन चैपल समय में मैं वहां नहीं रहूंगा। लेकिन चैपल समय को छोड़कर मैं 9 बजे से 2 बजे तक वहां रहूंगा। यह कल और गुरुवार के लिए है, और फिर अगले गुरुवार को हमारी एक और प्रश्नोत्तरी होगी और उसके बाद हम अंतिम परीक्षा के लिए तैयार होंगे। फाइनल व्यापक नहीं होगा। इसमें अंतिम परीक्षा से संबंधित सामग्री शामिल होगी। तो उम्मीद है कि यह अच्छी बात होगी। आइए प्रार्थना के एक शब्द के साथ शुरुआत करें और फिर हम आज डेविड के बारे में जानेंगे। आइए प्रार्थना के एक शब्द से शुरुआत करें। पिता, थैंक्सगिविंग के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। परिवार और दोस्तों के साथ और अपनी जड़ों की ओर लौटने का यह साल का एक अद्भुत समय है। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें प्रभु में सदैव आनंदित रहने और मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहने के लिए कहा है, आभारी होने के लिए, सभी चीजों पर धन्यवाद देने के लिए कहा है। और हम आपको उस उपहार के लिए सबसे अधिक धन्यवाद देते हैं जो आपने हमें अपने पुत्र यीशु मसीह के रूप में दिया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि जब हम आज एक शमूएल की पुस्तक को पढ़ते हैं और डेविड को देखते हैं तो हम डेविड में मसीह की कुछ समानताएं देख सकते हैं जो आपके दिल के अनुसार एक व्यक्ति है। यहां तक कि यीशु मसीह आपका पुत्र दाऊद के पुत्र के रूप में आया। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि जब हम आज डेविड के जीवन का पता लगाएंगे तो आप हमारी मदद कर सकते हैं। मैं एक बार फिर आपके बेटे ईसा मसीह के लिए और हमें अपना वचन देने के लिए धन्यवाद देता हूं। उनके अनमोल नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। बी शाऊल की परेशानी, गिलगाल बलिदान, 4:47 से 11:05। हम वहीं से शुरू करने जा रहे हैं जहां हमने पिछली बार छोड़ा था। डेविड तक पहुंचने से पहले हमें शाऊल से मिलना होगा। इसलिए हमें शाऊल को नीचे गिराना होगा। वह इसराइल का पहला राजा था। अब हम शाऊल का नकारात्मक पक्ष देखने जा रहे हैं। यह शाऊल की गलती है जो गिलगाल में अध्याय 13 में घटित होती है। अब काफी कुछ विवरण है। वास्तव में प्रथम श्रेणी में यह थैंक्सगिविंग के बाद है और मैं लोगों को लुप्त होते हुए देख सकता हूँ। मुझे लगता है कि थैंक्सगिविंग के बाद हर कोई थक गया है। मैंने सोचा कि शायद सभी लोग तरोताजा होकर वापस आएंगे। अत शाऊल डर गया। शाऊल क्यों डरा हुआ है? आप लोग जॉर्डन हैं, आप लोग इज़राइल हैं, गैलीली सागर, जॉर्डन नदी, मृत सागर। यह जॉर्डन और इज़राइल दोनों देशों के बीच की घाटी है जिसे रिफ्ट वैली कहा जाता है। वह गिलगाल जाता है। शाऊल क्यों डरा हुआ है? क्योंकि गिलगाल इस रिफ्ट घाटी के आधार में जेरिको के नीचे स्थित है। उसे चिंता है कि पलिश्ती उन पर हमला करने वाले हैं। अब फिलिस्ती आमतौर पर कहां रहते थे? यदि यह इसराइल है, इसराइल के पहाड़, तुम लोग भूमध्य सागर हो, फिलिस्ती कहां हैं? पलिश्ती तट के बाहर। वे समुद्र तट के किनारे थे। यह वहां समतल है। वे इसे अपने रथों के लिए पसंद करते हैं। इस प्रकार पलिश्ती तटीय मैदान पर रहते हैं। यदि शाऊल यही घाटी में है और उसे चिंता है कि पलिश्ती उस पर आक्रमण करेंगे तो समस्या क्या है? इसका मतलब है कि पलिश्ती इसराइल के पहाड़ों से होकर आए थे और पूरे रास्ते में हैं और यहां उन पर हमला करने के लिए तैयार हैं। क्या यह वास्तव में खतरनाक स्थिति है जब पलिश्ती वास्तव में इसराइल से होकर गुजरे हैं और अब जेरिको की ओर आ रहे हैं? यह क्यूबा द्वारा मोंटाना पर हमला करने जैसा होगा। आप लोग कहेंगे उन्हें इसे लेने दो। यदि क्यूबा ने मोंटाना पर हमला किया तो क्या इसका मतलब यह होगा कि क्यूबा मोंटाना तक पहुंचने के लिए अमेरिका के अधिकांश हिस्से में आ गया है और चला गया है? क्या यह खेल खत्म हो गया है? गंभीर रक्षा के अधिकांश स्थान पहले ही ले लिए गए होंगे। ये ऐसा ही है। पलिश्ती पहाड़ों से होकर आ गए हैं और शाऊल बहुत डर गया है। उसे मौत से डरना चाहिए। अध्याय 13 में सैमुअल ने उसे क्या बताया? सैमुअल ने कहा, ठीक है, तुम गिलगाल जाओ और मैं 7 दिन बाद वहां रहूंगा और मैं एक बलिदान चढ़ाऊंगा और हम इस पर प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अच्छा, 7 दिन बाद, सैमुअल कहाँ है? अचानक भविष्यवक्ता सैमुअल दिखाई नहीं देता। ये भविष्यवक्ता बैठकों में हमेशा देर से आते हैं। इसलिए अध्याय 13 में कहा गया है, शाऊल गिलगाल में रह गया और उसके साथ की सारी सेना भय से कांप रही थी। उसने 7 दिन तक प्रतीक्षा की। जब आप भयभीत होते हैं तो डर आपको क्या करने के लिए प्रेरित करता है? जब आप डरते हैं तो क्या आप वहीं रहना चाहते हैं या भागना चाहते हैं? भय उड़ान की ओर ले जाता है, आप भागना चाहते हैं। इसलिए ये लोग नीचे डर के मारे कांप रहे हैं, लेकिन शमूएल गिलगाल नहीं आया था और शाऊल के आदमी तितर बितर होने लगे थे। इसलिए उसने कहा, मेरे लिए होमबलि और मेलबलि लाओ, मैं होमबलि चढ़ाने जा रहा हूं, अब समस्या क्या है? वह एक राजा है। क्या वह पुजारी है? नहीं, वह नहीं है। क्या आपने देखा कि शक्ति किसी व्यक्ति पर क्या प्रभाव डालती है? वह राजा है और अब वह अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा है। क्या सत्ता के पदों पर बैठे लोग अपनी शक्तियों का विस्तार करना पसंद करते हैं? तो अब वह अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा है। वह यह कहते हुए पुरोहिती कार्यों को अपने हाथ में ले रहा है, मुझे यह करना होगा या मेरे सभी लोग तितर बितर हो जाएंगे। वैसे जैसे ही वह बलि चढ़ाना शुरू करता है, अंदाजा लगाइए कि कौन आ जाता है। निश्चित रूप से वह बलिदान देना शुरू कर देता है और सैमुअल प्रकट हो जाता है। यह अध्याय 13 है। शाऊल ने कहा, जब मैंने देखा कि वे लोग तितर बितर हो रहे हैं और तुम नियत समय पर नहीं आए और पलिश्ती मिकमाश में इकट्ठे हो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि अब पलिश्ती मुझ पर चढ़ाई करेंगे गिलगाल और मैंने प्रभु का अनुग्रह नहीं चाहा है। इसलिए मुझे होमबलि चढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा। शमूएल की प्रतिक्रिया, तुमने मूर्खतापूर्ण काम किया है। शमूएल ने कहा, तुमने वह आज्ञा नहीं मानी जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दी थी। यदि तुमने यहोवा की आज्ञा का पालन किया होता तो उसने तुम्हारा राज्य इसराइल पर सदैव के लिए स्थापित कर दिया होता। यह एक बहुत ही दिलचस्प कथन है। शाऊल, यदि तूने यहोवा की आज्ञा मानी होती तो वह तुझे सदा के लिए स्थिर कर देता। शाऊल कहता है, हे, परंतु मैं परमेश्वर को बलिदान चढ़ाना चाहता था। वह एक पवित्र आवर्ण था। वह धर्मप्रायणता का उपयोग करता है। वह अपने पाप को छुपाने के लिए धर्म का उपयोग करता है। क्या वह कदम बहुत सामान्य है? अत शमूएल इससे मूर्ख नहीं बनता है और शमूएल उसे डांटता है, परंतु उसे डांटने की प्रक्रिया में वह कहता है, यदि तूने आज्ञा का पालन किया होता तो परमेश्वर ने तुझे और तेरे वंश को इसराइल पर सदा के लिए राजा बना दिया होता। तो इसका मतलब यह है कि क्या ईश्वर के साथ कोई अगर है? परमेश्वर ने कहा, यदि तूने आज्ञा मानी होती तो मैं तुझे सदा के लिए राजा बना देता। इसका मतलब यह है कि ऐसी संभावना है कि भगवान इसके लिए तैयार थे, लेकिन शाऊल ने इसके विपरीत निर्णय लिया और भगवान ने उसका जवाब दिया। तो वहां एक यदि है, एक संभावित यदि जो कभी नहीं हुआ। भगवान ने कहा, यदि तुमने दूसरा किया होता तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए राजा बना देता। तो यह उन मामलों में से एक है जहां आप संभावित भविष्य, कई संभावित भविष्य देखते हैं। यहां शाऊल है, यदि तुम होते तो वह इसे बना देता। इसलिए सब कुछ तय नहीं है। यह नियतिवाद नहीं है जहां सब कुछ तय और जीवाश्म हो गया है और भगवान कह रहे हैं कि हम बिंदु ए से बी से सी से डी तक जा रहे हैं और सब कुछ तय हो गया है। नहीं, भगवान ने कहा, यदि तुमने ऐसा किया होता तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए राजा बना देता। तो यह नीतिवाद के विरुद्ध मेरी प्रतिक्रिया है। मुझे लगता है कि यह परिच्छेद उस तरह के नीतिवाद के खिलाफ है कि भविष्य में सब कुछ तय है। ऐसा लगता है कि भविष्य अधिक लचीला है और अधिक प्रभावित होने में सक्षम है। अध्याय 14 में सी जोनाथन की कहानी 11:06 से 18:59। अब इस साहित्य में सुंदर क्या है? 1 सैमुअल सुंदर साहित्य है। मुझे बस इसे एक तरह से सेट करने दीजिए। अध्याय 13 में शाऊल ने बलिदान चढ़ाकर अवज्ञा की। अध्याय 13 में शाऊल का उल्लेख मिलता है। अध्याय 15 में शाऊल अमालेकी राजा को नहीं मारना चाहता था, जैसा कि परमेश्वर ने उसे करने के लिए कहा था। तो 15 में शाऊल भी नीचे जाने वाला है। तो अध्याय 13 में शाऊल नीचे चला जाता है और अध्याय 15 में शाऊल फिर से नीचे चला जाता है। अध्याय 13 और 15 के ठीक बीच में क्या रखा गया है? खैर, अध्याय 14। अध्याय 14 मध्य में है और अध्याय 14 जोनाथन के बारे में है। तो आपको जो मिलता है वह है शाऊल 13 में नीचे, 15 में नीचे और फिर इसके बीच में जोनाथन इसके विपरीत एक अद्भुत युवक के रूप में उभरता है। मैं सिर्फ अध्याय 14 में जोनाथन की कहानी पढ़ना चाहता हूँ। जोनाथन के बारे में बहुत कुछ नहीं है। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ, पुराने नियम में ओटी में 2 नायक हैं जो निर्दोष हैं, जोसेफ और डैनियल। वे 2 लोग निंदा से ऊपर हैं। जोनाथन के बारे में जो कुछ भी कहा गया वह अच्छा है। जोनाथन की कहानी के साथ समस्या यह है कि उसके पास केवल कुछ छंद हैं। आपको जोनाथन के बारे में लंबा विवरण नहीं मिलता। अध्याय 14 सबसे लंबा है, इसलिए वह डैनियल या जोसेफ पर लंबे आख्यानों के समान स्तर पर नहीं है। लेकिन कहानी इस प्रकार है, जोनाथन और उसका हथियार ढोने वाला मैदान में हैं। वे मिकमाश के पूर्व की ओर चल रहे हैं, जहां पलिश्ती थे। आपको यह समझने की आवश्यकता है, और मैं वाड़ी स्थान पर गया हूं सुवेनी। दोनों तरफ की चट्टानें लगभग 250 फीट ऊंची हैं। दोनों तरफ चट्टानें हैं। योनातान और उसका हथियार ढोने वाला घाटी में चल रहे हैं। इसराइल में वे आपसे क्यों कहते हैं कि घाटी में कभी न चलें? मुझे लगता है कि मैंने पहले भी इसका उल्लेख किया है। जब हम बेतलहम के पूर्व में यहूदिया के रेगिस्तान में थे, तो हम में से 3 लोग लगभग मेरे आकार के या उससे थोड़े बड़े थे, और यह 12 वर्षीय अरब बच्चा शीर्ष पर बैठा था। हम घाटी में चल रहे थे और हमें यह नियम नहीं मालूम था कि आप घाटी में कभी न चलें। यह 12 साल का बच्चा हम पर पत्थर फेंकना शुरू कर देता है। जब कोई पत्थर 200-300 फीट नीचे आता है, तो सवाल करें, क्या आपको भागना होगा? तो बच्चा वहां है, अपना सिर हंसा रहा है, क्योंकि 3 बड़े अमेरिकी लोग इस बच्चे के पत्थरों से बचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मेरा मतलब है कि वे तेजी से आ रहे थे और पत्थर चट्टाने थे। यह आपके सिर से उतर गया होगा। वह बस सिर झुकाकर हंस रहा था। हम गुस्से में थे, लेकिन क्या हम बच्चे को पा सके? जब तक हम वहां पहुंचे, वह बहुत पहले जा चुका था, इसलिए हम अपनी जान बचाने के लिए भागे। उस दिन हमने सबक सीखा, घाटी में मत चलो। जोनाथन कहाँ है? वह घाटी में है। क्या वह असुरक्षित है? पलिश्ती कहाँ है? पलिश्ती 250 फुट ऊपर हैं। क्या उनके पास वहां बहुत सारी चट्टाने हैं? हाँ। जोनाथन यहां जो कहता है उसे सुने, यह वाकई दिलचस्प है। योनातान ने अपने जवान हथियार ढोने वाले से कहा, आओ उन खतनारहित लोगों की चौकी पर चलें। शायद प्रभु हमारे पक्ष में कार्य करेंगे, इसकी जांच करें। कोई भी चीज प्रभु को बचाने में बाधा नहीं डाल सकती, चाहे बहुतों द्वारा या कुछ लोगों द्वारा। हमें उसके समान कुछ कहाँ मिलता है जहाँ प्रभु अनेक लोगों द्वारा या कुछ लोगों द्वारा मुक्ति देते हैं? क्या किसी को गिदोन याद है उसके पास इतनी सारी सेना थी और उसने उन सभी लोगों को घर भेज दिया था। भगवान कहते हैं, अरे इसमें केवल 300 लगते हैं, मुझे बस 300 की आवश्यकता है और हम पूरे मिद्यानी समूह पर कब्जा कर लेंगे। प्रभु बहुतों से या थोड़े से लोगों को बचाता है। यह एक अद्भुत कथन है। प्रभु बहुतों को या कुछ को बचा सकता है। तो बस मेरे कवच वाहक और मैं, हम यह कर सकते हैं। वह सब करो जो तुम्हारे मन में है, उसके कवच वाहक ने कहा, आगे बढ़ो, मैं दिल और आत्मा से तुम्हारे साथ हूँ। क्या उस हथियार ढोने वाले ने जोनाथन पर भरोसा किया? मेरा बेटा युद्ध से वापस आया और उसने इस बारे में बात की कि आपके पास कुछ लोग हैं जो आपको युद्ध में ले जाते हैं और आप सबसे कठिन युद्ध में उनका अनुसरण करेंगे। आप मरते दम तक उनका पीछा करेंगे। हाँ, क्या आपके पास ऐसे अन्य लोग हैं जिनका आप सड़क पर अनुसरण नहीं करेंगे? मेरे बेटे की एक समस्या यह थी कि वह एक समूह नेता था। जो लोग उसका पीछा कर रहे थे, क्या वे उसके साथ मौत के मुंह में चले गए होंगे? हाँ, क्योंकि उन्हें पता था कि पहले कौन जाएगा। जब दरवाजा खटखटाना पड़ा, जब उन्हें आईडी ढूंढना पड़ा, तो सबसे पहले कौन जाएगा? क्या मेरा बेटा सबसे पहले अंदर जाएगा? यह बहुत बेवकूफी है। वैसे भी तो वह पहला व्यक्ति होगा। मैं और मेरी पत्नी यह जानते थे, इसीलिए जब उन्हें दूसरे कार्यभार पर स्थानांतरित किया गया तो हम खुश थे। हम तो बस इस बात से खुश थे कि उसके कुछ दोस्त इसलिए वापस नहीं आए क्योंकि वे पहले जाकर नेतृत्व कर चुके थे। उसका हथियार ढोने वाला कहता है, जोनाथन, वहाँ पलिश्तियों का एक झुंड है, वहाँ 20 से अधिक पलिश्ती हैं, 20 के मुकाबले हम में से केवल 2 हैं। अनुमान लगाओ कि कौन जीतता है। वैसे क्या हमें 250 फीट ऊंची चट्टान पर चढ़ना होगा? आप 250 फुट की चट्टान पर चढ़ते हैं और फिर 20 लोगों के साथ आमने सामने की लड़ाई करते हैं। पलिश्ती क्या कहते हैं? पलिश्ती भी इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उन दोनों ने स्वयं को पलिश्ती चौकी पर दिखाया। देखो, पलिश्तियों ने कहा, इब्री लोग अपने बिलों से, जिनमें वे छिपे हुए हैं, रेंगकर बाहर आ रहे हैं। चौकी के लोगों ने जोनाथन के हथियार ढोने वाले से चिल्लाकर कहा, हमारे पास आओ और हम तुम्हें सबक सिखाएंगे। अब जोनाथन ने प्रभु से क्या कहा? यदि वे कहें कि ऊपर आ जाओ, तो हम जान लेंगे कि परमेश्वर ने उन्हें हमारे हाथ में सौंप दिया है। यदि वे कहते हैं कि नीचे रहो, तो हम जान लेंगे कि प्रभु ने उन्हें हमें नहीं दिया है। वे कहते हैं, यहाँ आओ यहूदी लड़कों, हम तुम्हें यहाँ एक या दो चीजें सिखाने जा रहे हैं। उनके पास 20 लोग हैं। वे इन लोगों को साफ करने जा रहे हैं। तो वे ऊपर आते हैं। वैसे जब वे चट्टानों पर चढ़ रहे थे, तो क्या वे उन्हें बाहर निकाल सकते थे? आपको बस वहां कुछ चट्टानें फेंकनी हैं, इससे वे चट्टान से गिर जाएंगे। लेकिन उन्होंने उन्हें वहां तक जाने दिया और क्या हुआ? योनातान ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा, मेरे संग चढ़, यहोवा ने उन्हें हमारे हाथ में कर दिया है। सो वे वहां चढ़ गए और पलिश्ती योनातान और उसके हथियार ढोने वाले से हार गए और उनके पीछे से उन्होंने पहले ही आक्रमण में मार डाला और योनातान के हथियार ढोने वाले ने कोई 20 पुरुषों को मार डाला। 20 के मुकाबले 2 लोग, जोनाथन और उसका कवच वाहक 20 लोगों को बाहर निकालते हैं। क्या जोनाथन एक योद्धा है? कभी कभी आप पवित्र शास्त्र में सोचते हैं, हे जोनाथन सिर्फ एक नम्र छोटे राजा का बेटा है, क्या यह लड़का योद्धा है? हाँ, 2 लोग 20 निकाल लेते हैं और फिर क्या होता है? ईश्वर शामिल हो जाता है और पूरी सेना में दहशत फैल जाती है क्योंकि ईश्वर जमीन को हिला देता है। यह ईश्वर द्वारा भेजी गई घबराहट थी। तो भगवान जमीन हिला देते हैं। अचानक पलिश्तियों को क्या एहसास हुआ? इन यहूदियों को यह ईश्वर मिल गया है जिसने लाल सागर को विभाजित कर दिया है और अब जमीन हिल रही है, हम यहां से निकलने वाले हैं। इसलिए जो कुछ हो रहा है उससे पलिश्ती भयभीत हो गए हैं। यहां कुछ ऐसा है जिसका एहसास मुझे तब नहीं हुआ जब मैं छोटा था। पलिश्ती सेना में यहूदी भाड़े के सैनिक थे। जोनाथन ने वह दिन कैसे जीता? खैर, जोनाथन एक नायक है, जोनाथन एक शक्तिशाली योद्धा है। मैं उससे यह बात छीनना नहीं चाहता। लेकिन क्या पलिश्ती सेनाओं में यहूदी भी थे? आगे चलकर पलिश्ती सेनाओं में कौन शामिल होगा? डेविड ऐसा करता है। इस समय जोनाथन के साथ जमीन हिल गई, पलिश्ती घबरा गए, और फिर यदि आप पद 20 पर जाएं तो यह कहता है, शाऊल और उसकी सेना इकट्ठी हुई, युद्ध करने गई। जब वे पलिश्तियों से लड़े तो वे पूरी तरह असमंजस में थे, एक दूसरे पर तलवारों से प्रहार कर रहे थे। वे इब्री जो पहले पलिश्तियों के साथ थे, उनके साथ उनकी छावनी में चले गए और इसराइलियों के पास चले गए। इसलिए जो इसराइली पलिश्तियों की सेना में भाड़े के सैनिक थे, जब इसराइलियों ने आक्रमण किया तो वे इसराइली पलट गए और वास्तव में पलिश्तियों के विरुद्ध हो गए। तो वह भी लड़ाई का हिस्सा था। इसराइली जो भाड़े के सैनिक थे, वे पलट गए और जोनाथन जीत गया। भी शाऊल की शपथ और जोनाथन की लोगों द्वारा रक्षा की गई। 19:00-27:30 इस प्रकार जोनाथन के हाथों एक बड़ी जीत हुई और प्रभु ने जीत हासिल की। यह एक बड़ा सौदा है। अब समस्या क्या है? शाऊल शामिल हो जाता है। अब शाऊल की बात क्या है? शाऊल ने प्रतिज्ञा की कि अपने शत्रु को परास्त करने से पहले कोई भी भोजन नहीं करेगा। शाऊल ने प्रतिज्ञा की। शाऊल ने लोगों को शपथ खिलाकर कहा, शापित हो वह मनुष्य जो सांझ होने से पहले कुछ खाए। मूलतः हम उन पलिश्तियों का पीछा करने जा रहे हैं और उन्हें पूरी तरह से हरा देंगे। भोजन के लिए कोई नहीं रुक सकता। अब जोनाथन की समस्या क्या है? जोनाथन 250 फीट की चट्टान पर चढ़ गया और 20 लोगों से आमने सामने की लड़ाई लड़ी। क्या जोनाथन भूखा है? क्या आपको लगता है? हाँ, लड़का भूखा मर रहा है। तो क्या होता है कि वह जंगल से होकर जा रहा है, उसे कुछ शहद दिखाई देता है, वह उसे निकाल लेता है, वह खाता है और उससे बेहतर महसूस करता है और प्रोत्साहित होता है, और फिर उसके बाद क्या होता है? अचानक किसी तरह मामला उसके खिलाफ हो गया और उन्होंने चिट्ठी डाली और जोनाथन को अपने पिता की प्रतिज्ञा तोड़ने के कारण चिट्ठी डालनी पड़ी। तो फिर उसके पिता अपने हीरो बेटे के साथ क्या करने जा रहे हैं? वैसे क्या जोनाथन को पता था कि उसके पिता ने वह मूर्खतापूर्ण प्रतिज्ञा की थी? जोनाथन को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके पिता ने यह प्रतिज्ञा की है। वह जंगल से गुजरते हुए भूख से मर रहा था, उसे इसके बारे में पता नहीं था। इसलिए जोनाथन पूरी तरह से निर्दोष था, और फिर भी उसका पिता उसे मार डालने वाला था। क्या वह दुष्ट है? जोनाथन एक हीरो है। जोनाथन की जान किसने बचाई? यह कहता है, शाऊल कहता है, तुम मर जाओगे, अत योनातान की सेना के लोगों ने उसे उसके पिता के हाथ से बचाया। उसके युद्ध मित्रों ने उसे राजा, उसके अपने पिता के हाथ से बचाया। पिता की मूलभूत भूमिकाओं में से एक क्या है? एक पिता की मूलभूत भूमिकाओं में से एक यह है कि वह अपने बच्चों के लिए क्या करे? अपने बच्चों की रक्षा के लिए। यहां शाऊल अपने ही बच्चे को मारने जा रहा है। हां हन्ना, छात्र पूछता है, क्या हर कोई सुनता है कि वह यहां कथा में मुझसे आगे है? क्या हर कोई सुनता है कि उसने क्या सुझाव दिया है? अगला अध्याय, शाऊल अमालेकियों के राजा को छोड़ने जा रहा है जिसे मारने के लिए परमेश्वर ने उनसे कहा था, और फिर भी यहां वह अपने ही बेटे को मारने जा रहा है। मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि यह पूरी चीज उल्टी है। इसलिए वह विदेशी राजा को तो छोड़ देता है, लेकिन वह अपने बेटे को मारने जा रहा है। एक समय की बात है, मेरी दो बेटियां थीं। मैं घर में था और बर्तन मांज रहा था। मैं दो युवा बेटियों का पिता था और वे पिछवाड़े में ट्रकों से खेल रही थीं। मेरी बेटियों को ये दो ट्रक मिले हैं, वे उनमें पत्थर भरती हैं और उन्हें ढोती हैं, डंप करती हैं। मैंने गुड़िया वाला काम नहीं किया, मुझे ट्रक ज्यादा पसंद हैं, लेकिन फिर भी। इसलिए वे वापस खेल रहे हैं। मैं बर्तन साफ कर रही हूँ और मैं पीछे की ओर देख रही हूँ, अपने बच्चों को मिट्टी में खेलते हुए देख रही हूँ। वे यहाँ से पोल तक आ रहे थे। जैसे ही मैं बर्तन साफ कर रही होती हूँ, यह आदमी नीचे आता है। नीचे जंगल के बीच से रास्ता था, दोनों तरफ जंगल थे। नीचे एक पैदल रास्ता था और फिर यह समुद्र तट तक चला गया। सड़क के उस पार और हमारे रास्ते में एक समुद्र तट था, इसलिए लोग हर समय उस पर यात्रा करते थे। तो मैं बर्तन साफ कर रही हूँ और अचानक उसका आदमी, लगभग 40 साल का आदमी, नीचे आता है। उसकी छाती भालू जैसी है, उसके पेट में बड़ी बियर है। वास्तव में बेहतर होगा कि मैं इसके बारे में सावधान रहूं। वह नीचे आता है। फिर मैंने देखा कि लगभग आधे रास्ते पर अचानक वह रुक गया। वह मेरी बेटियों को घूरने लगता है। अब मैं वहां बैठकर सोच रही हूं, ठीक है, हर कोई यहां से गुजरता है और यह ठीक है, लेकिन वह रुक जाता है और मैं अभी भी बर्तन साफ कर रही हूं। लेकिन क्या मैं उस आदमी को बांस की तरह देख रही हूं? तो तुम मेरी बेटियों पर क्या नजर रख रहे हो? समुद्र तट पर उतरें, चलते रहें। और अगली बात, वह आदमी रेलिंग पर चढ़ गया। वह रेलिंग पर चढ़ जाता है और मैं उसे जंगल से गुजरते हुए देखता हूं, और मैं उसे जंगल में मेरी बेटियों के ऊपर रेंगते हुए देखता हूं। मेरे अंदर कुछ गड़बड़ हो गई, मैंने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। हाई स्कूल में मैंने फुटबॉल खेला, मैंने सब कुछ खेला, बास्केटबॉल, मैंने सभी खेल खेले। यदि आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है, तो मैं विरोधाभासी स्थितियों में रहा हूँ। ईमानदारी से कहूँ तो मैंने इसे कभी नहीं खोया है। मेरा मतलब है कि यह तंग था, चीजें हो रही थीं, लेकिन मैंने इसे कभी भी पूरी तरह से नहीं खोया। अचानक जब मैं बर्तन साफ कर रही थी, तो मैं इसे पूरी तरह खो बैठी। मैंने वे बर्तन गिरा दिए और मैं पीछे के दरवाजे से भागकर बाहर चला गया। मैं पूरी तरह से था, मैं कहना चाहता हूँ, मैं पागल था। मेरा मतलब है कि यह पूरी तरह से था, मैं विक्षिप्त था। मैं जंगल की ओर भागता हूँ, वह आदमी भाग जाता है। मुझे नहीं पता कि वह कैसे बच गया, लेकिन भगवान की स्तुति करो कि वह बच गया, क्योंकि मैं जानता हूं कि क्या हुआ होगा। मैं उसे नहीं मारता, लेकिन मैंने दोनों तरफ की पसलियां तोड़ दी होती, इसलिए मैंने पुलिस को बुलाया। जब आप छोटे शहर में हो, तो छोटे शहर का क्या लाभ है? हाँ, इसलिए मैंने पुलिस को बुलाया, इसलिए टेरी आ गया। शायद टेप में यह नहीं कहना चाहिए, लेकिन टेरी आ गया। मैंने कहा, टेरी, मेरे पूरे जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ, मैं नियंत्रण से बाहर हो गया था। मैं पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गया था। मैं बस उस आदमी को मारने ही वाला था। टेरी, मैंने अब पुलिस को फोन किया, क्या तुम लोग मुझे जेल में डालोगे या कुछ और क्या होगा? मैं पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गया था। इससे मैं डर गया, मैं वास्तव में कांप रहा था। टेरी ने कहा, टेड, शांत हो जाओ, मैं ही वह व्यक्ति हूं जो रिपोर्ट लिखता है। मैं आपका ख्याल रखूंगा, आप लोग कहते हैं यह न्याय नहीं है और आप इस तरह से पागल हो जाते हैं, ऐसा दोस्त होना अच्छी बात है। उन्होंने कहा, हम आपका ख्याल रखेंगे। लगभग 3 दिन बाद वह लड़का था, हमारी पीढ़ी में हम उन्हें फ्लैशर्स कहते थे, लेकिन मुझे नहीं पता कि आपकी पीढ़ी में इसका क्या मतलब है। यह लड़का झाड़ियों के पास है और कुछ लड़कियां वहां से गुजर रही थीं और वह इन लड़कियों को चमकाने के लिए तैयार है। एंडी गैल्विन, जिसका वजन लगभग 6'4" है, वजन लगभग 260 से 270 पाउंड है, इस व्यक्ति को अपना काम करने के लिए तैयार होते हुए देखता है। फिर एंडी रन आउट होकर इस आदमी का पीछा करना शुरू कर देता है। यह वही लड़का था जिसका मैंने पीछा किया था। इस बार वह उसका पीछा कर रहा है। अचानक हमारे चर्च का पादरी एक गुजरती कार में है और एंडी को देखता है, जो उसके चर्च का सदस्य है। इस आदमी का पीछा कर रहा है। चर्च का पादरी कार से उतरता है, बाहर जाता है और उस आदमी से निपटता है। तभी एंडी उसके ऊपर बैठ जाता है। जब एंडी आपके ऊपर बैठता है तो आप कहीं नहीं जा रहे हैं। तो वह उस पर बैठ गया और फिर उन्होंने टेरी को बुलाया, जो पुलिस वाला था। वे उसकी तलाश कर रहे थे क्योंकि उसने आसपास के कुछ अन्य शहरों में भी ऐसा किया था, लेकिन मुझे खुशी थी कि मैंने उसे नहीं पकड़ा। मेरा कहना यह है, अपने बच्चों की सुरक्षा करना पिता की गहरी भूमिकाओं में से एक है। क्या यह बात किसी में इतनी गहरी है कि जब आप अपने बच्चों को खतरे में देखते हैं तो क्या आपके माता पिता घबरा जाते हैं कि कोई आपको चोट पहुंचाने वाला है? क्या आपके माता पिता में से कुछ सीधे छत से होकर जाएंगे? मैं जो कह रहा हूं वह यह है, क्या आप देख रहे हैं कि शाउल क्या कर रहा है? शाउल अब पिता है और पिता अपने ही बेटे को चोट पहुंचाने जा रहा है। क्या तुमने देखा कि शाउल कितना अस्त व्यस्त है? यह उन सभी चीजों के बिल्कुल खिलाफ है जो एक पिता में होनी चाहिए, जिसे अपने बेटे से प्यार करना चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए। शाउल प्रमुख झटका था। मुझे लगता है कि यह मेरा प्रमाण है, शाउल एक मूर्ख है। मुझे नहीं पता कि और क्या कहूं। जब शाउल अपने बेटे के पास इस प्रकार आता है तो उसे झटका लगता है। अब क्या होता है? यह विडंबना है और यह वही है जो हन्ना ने पहले बताया था। शाउल अपने ही बेटे को मार डालेगा क्योंकि उसके अहंकार का उल्लंघन किया गया है, और फिर भी जब भगवान की बात आती है तो भगवान ने उसे अमालेकियों के राजा अगाग को मारने का आदेश दिया, फिर भी शाउल जीत गया। वह वही करो जो परमेश्वर ने उसे करने की आज्ञा दी थी। इसलिए शाउल के लिए, यदि आप शाउल के वचन का उल्लंघन करते हैं तो इसका अर्थ है मृत्यु। यदि आप परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। यह परमेश्वर का वचन है, ठीक है, मैंने उसे पकड़ लिया था, मैंने उसे मारा नहीं, और वह बहाने बनाता है। तो यहां बड़ी विडंबना है। इसलिए मुझे लगता है कि अध्याय 14 और 15 इस विडंबना से जुड़े हुए हैं। वह अपनी ही बात को इतनी गंभीरता से लेता है मानो वह अपने बेटे को मारने जा रहा हो, परंतु परमेश्वर का वचन है वह ऐसा नहीं करेगा। तो इन दो अध्यायों के बीच यह बड़ी विडंबना है। खैर, वह जोनाथन है। जोनाथन एक हीरो है, एक अच्छा लड़का है। शाउल की अमालेकियों के साथ अवज्ञा 27, 31, 31, 39। अब शाउल, यह अध्याय 15 है। अध्याय 13 और 15 तब हैं जब शाउल इसे विफल कर देता है, और यह तब होता है जब अध्याय 15 में भगवान उस पर आते हैं। अध्याय 15:11 में भगवान का एक दिलचस्प कथन है। यह कहता है, प्रभु का वचन शमूएल के पास आया। मुझे दुख है कि मैंने शाउल को राजा बनाया है, क्योंकि वह मुझसे दूर हो गया है और उसने मेरे निर्देशों का पालन नहीं किया है। भगवान कहते हैं, मैं दुखी हूं। भगवान के लिए शोक मनाने का क्या मतलब है? परमेश्वर कहते हैं, मुझे दुख है कि मैंने शाउल को राजा बनाया। क्या भगवान को कोई पछतावा है? परमेश्वर कहते हैं, मुझे दुख है कि मैंने शाउल को राजा बनाया। अब मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है। मैं ठीक से नहीं जानता कि इसका क्या मतलब है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ इतना है कि भगवान इस स्थिति पर विचार करता है। मैं इस धारणा को सामने लाना चाहता हूं कि क्या स्वर्ग में दुर्हक है। यहां यह कहा गया है, भगवान कहते हैं, मुझे दुख है कि मैंने शाऊल को राजा बनाया, स्वर्ग में क्या होता है, इसके बारे में यह एक बहुत ही दिलचस्प कथन है। इसलिए मैं हमेशा उस गाने पर वापस आता हूं। क्या स्वर्ग में आंसू हैं? हां, एरिक क्लैप्टन सही थे, स्वर्ग में आंसू हैं। परमेश्वर कहते हैं, मुझे दुख है कि मैंने शाऊल को राजा बनाया। अब यहां क्या होता है? परमेश्वर ने शाऊल से कहा कि वह बाहर जाए और अमालेकी लोगों को मिटा दे। परमेश्वर ने उससे अमालेकियों का सफाया करने के लिए क्यों कहा? अमालेकियों ने यहूदियों के साथ क्या किया? जब यहूदी जंगल से होकर जा रहे थे तो वहां ऐसे लोग थे जो कमजोर थे और पीछे चल रहे थे। वहां कुछ ऐसे भटकने वाले लोग थे जो कमजोर थे और वे पीछे की ओर लड़खड़ा रहे थे और अमालेकियों ने पीछे से यहूदियों पर धावा बोल दिया और उन कमजोर लोगों को मार डाला। तो क्या हुआ? परमेश्वर ने कहा, क्योंकि अमालेकियों ने गरीबों और उत्पीड़ितों का फायदा उठाया, अमालेकियों को मिटा दिया जाएगा। फिर वह शाऊल से कहता है, यही समय है और तू ही ऐसा करेगा, तो शाऊल चला जाता है और फिर शाऊल ऐसा नहीं करता। अध्याय 15 श्लोक 14 में जब शमूएल शाऊल से मिलता है, प्रभु तुम्हें आशीर्वाद दे, मैंने प्रभु के निर्देश का पालन किया। खैर, यह सच नहीं था, लेकिन सैमुअल ने कहा, मेरे कानों में भेड़ों का खून बहना क्या है? परमेश्वर ने तुमसे कहा था कि उनकी बकरियों, उनकी भेड़ों को मिटा दो, राजा सहित सब कुछ नष्ट हो जाना था। मुझे भेड़ों की यह मिमियाहट क्यों सुनाई देती है? शाऊल ने उत्तर दिया, सैनिक उन्हें अमालेकियों के पास से ले आए, उन्होंने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरी और गाय बैल को बचा लिया, उन्होंने उनमें से सर्वश्रेष्ठ को क्यों छोड़ दिया? उन्हें प्रभु के लिए बलिदान करने के लिए। इसलिए वह इस पवित्र आवरण को देता है, लेकिन भगवान ने उन्हें मिटा देने के लिए कहा। वह कहता है, ओह नहीं, हमने सबसे अच्छे को बचाया ताकि हम उन्हें बलिदान कर सकें प्रभु के लिए। शमूएल निराश है क्योंकि शाऊल इस पवित्र प्रकार की आड़ का उपयोग गिलगाल में अपने परमेश्वर यहोवा के लिए उन्हें बलि चढ़ाने के लिए करता है। शमूएल ने उत्तर दिया, क्या यहोवा होमबलि और बलिदान से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात मानने से प्रसन्न होता है? जाना पहचाना। यह हमारी स्मृति कविता है, उस परिच्छेद का यही संदर्भ है। क्या यहोवा बलिदान से प्रसन्न होता है? शाऊल कह रहा था, हमने बलिदान के लिए उत्तम से उत्तम भेड़ बचाकर रखी है। परंतु परमेश्वर कहता है, वह तुम्हारे बलिदान नहीं चाहता, आज्ञा मानना बलिदान से उत्तम है और चौकन्ना रहना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। क्योंकि विद्रोह शकुन विद्या के पाप के समान है, अहंकार मूर्ति पूजा की बुराई के समान है। क्योंकि तुमने यहोवा के वचन को अस्वीकार किया है, उसने तुम्हें राजा के रूप में अस्वीकार कर दिया है। अब अध्याय 15 में शाऊल जानता है कि यह खत्म हो गया है, भगवान ने उसे अस्वीकार कर दिया है। इसलिए भगवान ने उसे अस्वीकार कर दिया है और फिर भगवान यहां मनुष्य के मन के अनुसार उसके पीछे जा रहे हैं। जब तक आपका दिल सही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं। क्या यह सच है? नहीं, शाऊल ने कहा, मेरा हृदय सही है और मैं इसे परमेश्वर को अर्पित करने जा रहा था। भगवान कहते हैं, नहीं, तुमने जो किया वह गलत था। आप क्या करते हैं यह मायने रखता है, सिर्फ यह नहीं कि आपका दिल क्या कह रहा है। खैर, मेरा दिल सही था। कभी कभी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका दिल सही है या नहीं, मायने यह रखता है कि आप क्या करते हैं, साथ ही आपका दिल भी। यह एक या दूसरा नहीं है, यह दोनों और है। आपके पास दोनों अधिकार होने चाहिए। आप जो करते हैं वह सही होने के साथ साथ आपके दिल के इरादे भी सही होने चाहिए। इफ भगवान और परिवर्तन 31:40-32:54 श्लोक 22 में भगवान की इच्छा है, आज्ञा पालन करना बलिदान से बेहतर है, हमने अभी यही देखा है। अब अध्याय 15 श्लोक 29 में जो दिलचस्प है वह एक सुंदर श्लोक है, क्योंकि जो इसराइल का गौरव है वह झूठ नहीं बोलता या अपना मन नहीं बदलता, क्योंकि वह ऐसा मनुष्य नहीं है कि अपना मन बदल ले। क्या किसी को याद है, एक मिनट रुकें, क्या आपने अभी अभी यह नहीं कहा कि ईश्वर अपना मन बदल सकता है? कैसे यह काम करता है? मुझे लगता है कि मैं इस बात पर वापस जाता हूं कि क्या भगवान अपना चरित्र बदल सकते हैं, क्या उनका चरित्र दृढ़ है? उसका चरित्र नहीं बदलता। जब परमेश्वर अपना वचन देता है तो क्या परमेश्वर अपना वचन निभाता है? भगवान वादा निभाने वाला है। क्या ईश्वर भविष्य में ऐसी बातें कहने में सक्षम है जो कभी घटित ही नहीं होंगी? क्या ईश्वर अपना मन बदलने में सक्षम है? मैं उन्हें नष्ट करने जा रहा हूं, मूसा प्रार्थना करते हैं और फिर ईश्वर उन्हें बख्श देते हैं। तो सावधान रहो, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान सोच नहीं सकते। वैसे क्या सोच का मतलब बदलाव है? भगवान सोचते हैं, इसलिए सावधान रहें। यह उनका चरित्र है जो नहीं बदलता है, उनका शब्द नहीं बदलता है, लेकिन आपको इसे सार्वभौमिक में मैप करने के बारे में सावधान रहना होगा। जी डेविड का अभिषेक किया गया है 32:55-34:27। अब हम अंततः डेविड से मिल गए। तो यहाँ अब डेविड आता है। शाऊल के बारे में कहा जाता है कि यह इतिहास है 1 शमूएल 15 में। शाऊल नीचे चला जाता है और अब हम जानते हैं कि वहाँ एक नया आदमी आने वाला है। लेकिन अध्याय 16 में क्या होता है? अध्याय 16 के पहले श्लोक में एक समस्या है। यहोवा ने शमूएल से कहा, तो कब तक शाऊल के लिए विलाप करता रहेगा, क्योंकि मैंने उसे इसराइल का राजा होने से तुच्छ जाना है। अपने सींग में तेल भरो। अब जब एक भविष्यद्वक्ता अपने सींग में तेल भरता है तो वह तेल के साथ क्या करता है? वह लोगों का अभिषेक करता है। और वह अक्सर किसका अभिषेक करता है? राजा। तो उसके पास तेल का एक सींग है, वह किसी चीज का अभिषेक करने जा रहा है। वह अगले राजा का अभिषेक करने जा रहा है, इसलिए वह कहता है, अपने सींग में तेल, जैतून का तेल भर लो और अपने मार्ग पर चलो। मैं तुम्हें बेतलहम के यिशै के पास भेज रहा हूं, तो दाऊद बेतलहम नगर से होने वाला है। बेतलहम बेत का अर्थ है घर, लहम का अर्थ है रोटी, आथ बेतलहम का अर्थ है रोटी का घर। यहीं पर डेविड का घर था। और बेतलहम का दूसरा प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? वहां यीशु का जन्म होने वाला है। यह डेविड का शहर है जहां डेविड का जन्म भी हुआ था। मैं तुझे यिशै के पास बेतलहम भेज रहा हूं, मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुन लिया है। तब सैमुएल कहता है, मैं कैसे जा सकता हूं? शाऊल इसके बारे में सुन लेगा और मुझे मार डालेगा। प्रभु ने कहा, एक बछिया अपने साथ ले जाओ और कहो, मैं यहोवा के लिए बलि चढ़ाने आया हूं, और यिशै को बलि के लिए बुलाओ। एच भगवान और शाऊल का धोखा 34:28-37:48। क्या वह बछिया शाऊल को धोखा देने के लिए जानबूझ कर ली गई थी? उसके पास तेल का एक सींग है, वह बेतलहम क्यों जा रहा है? वह अगले राजा का अभिषेक करने जा रहा है। परमेश्वर कहते हैं, एक बछिया ले लो और शाऊल से कहो कि तुम बलि चढ़ाने जा रहे हो। क्या वह बछिया जानबूझकर शाऊल को धोखा देना चाहती थी ताकि शाऊल शमूएल को न मार डाले? वैसे क्या शाऊल शमूएल को मार डालेगा? क्या शाऊल अपने ही पुत्र को मार डालेगा? बाद में क्या शाऊल बार बार दाऊद को मारने की कोशिश करेगा? तो क्या शाऊल शमूएल को मार डालेगा? बेशक उसने किया होगा। भगवान कहते हैं, एक बछिया ले लो। अब यह कहानी आपको पुराने नियम में पहले से मौजूद दो अन्य कहानियों की याद दिलाती है। यहाँ कौन शामिल है? इस धोखे को कौन स्थापित करता है? क्या ईश्वर स्वयं इसे स्थापित करता है? वह कहता है, एक बछिया ले लो। उसे बताएं कि आप बलिदान के लिए वहां जा रहे हैं। तो भगवान इसमें शामिल है और योजना बना रहा है। अब दो अन्य कहानियां कहां थी जहां ऐसा हुआ है? हमने इसे पहले भी दो बार देखा है, क्या किसी को यह याद है? हाँ, निर्गमन के शुरुआती अध्यायों में हिब्रू दाइयों को याद करें। हमारे वहां पहुंचने से पहले सभी यहूदी महिलाओं के बच्चे हो चुके होते हैं, क्योंकि वे मिस्र की महिलाओं की तरह नहीं होती जब उनके बच्चे होते हैं। इसलिए इब्रानी दाइयों ने उसे छुपाने के लिए झूठ बोला। वैसे क्या परमेश्वर ने हिब्रू दाइयों को यहूदियों के साथ बाहर जाने और इसराइल का हिस्सा बनने की अनुमति दी थी? हाँ। क्या किसी को वह दूसरी कहानी याद है जहां धोखे का इस्तेमाल किया गया था और भगवान ने उसे स्वीकार कर लिया था? हाँ, राहब वेश्या। राजा के आदमी आते हैं और वह कहती है, ओह वे यहाँ थे लेकिन वे चले गए, वे उस रास्ते से चले गए। बेहतर होगा कि आप उन्हें पकड़ने के लिए तेजी से आगे बढ़े। वह उन्हें छत पर छिपा रही थी और राहब को इसराइल में स्वीकार कर लिया गया। क्या आपको वह लाल तार और वह खिड़की याद है जिससे राहब और उसके परिवार को बचाया गया था? दरअसल राहब किसकी वंशावली में आता है? राहब वेश्या यीशु मसीह की वंशावली में है, मत्तीए। तो मैंने पहले जो सुझाव देने की कोशिश की थी वह इस प्रकार के धोखे के साथ इसे बुराई की श्रेणी से बाहर निकालने और चतुराई की श्रेणी में डालने का था। जब आप बुराई से निपट रहे हो तो क्या आपको चतुर होना होगा? मुझे इसे अलग तरीके से कहने दीजिए। चतुराई के लिए हिब्रू शब्द अरुम है। अरुम का अनुवाद बुद्धि भी किया जाता है। इसलिए जिस शब्द का अनुवाद किया जाता है अनुवाद के आधार पर कभी कभी उसका अनुवाद चतुर किया जाता है और वास्तव में नीतिवचन और अन्य स्थानों में शब्द का अनुवाद बुद्धि किया जाता है। जब आप बुराई से निपट रहे हो तो क्या आपको बुद्धिमान होना होगा? क्या आपको चतुर होना होगा? वैसे यह सिर्फ मैं ही नहीं बना रहा हूँ। यीशु कहते हैं, बुद्धिमान या चतुर सांपों की तरह और कबूतरों की तरह हानिरहित बनो। कबूतरों की तरह निर्दोष, इसलिए सांपों की तरह बुद्धिमान और कबूतरों की तरह हानिरहित बनो। मुझे लगता है कि आपको यहाँ जो मिला है वह यह है कि भगवान चतुर हो रहा है, क्योंकि वह जानता था कि शाऊल शमूएल को मार डालेगा। तो वह कह रहा है, ठीक है, हमें उसे धोखा देना होगा, और उन्होंने ऐसा किया। कुछ लोगों का आकार बिगड़ जाता है, मुझे नहीं लगता कि यह कोई बड़ा मुद्दा है। युद्ध या बुरे प्रसंग में जान बचाने के लिए झूठ बोलना ठीक है।
आई
डेविड का अभिषेक 37:49-51 शमूएल यिशै के पुत्र का अभिषेक कर रहा है और यिशै अपने पहिलौठे को छोड़कर किसे बाहर लाता है? यहाँ मेरा पहला जन्म हुआ है, भगवान कहते हैं, नहीं, मैं उसका पहला जन्म नहीं चाहता, उसका दूसरा जन्म, उसका तीसरा जन्म। वह अपने सभी बेटों को बाहर लाता है और अंत में कहता है, अरे मेरे और कोई बेटे नहीं हैं। और वह कहता है, ओह हाँ, वह जवान लड़का है लेकिन वह बच्चा है परिवार में से, वह भेड़ों को देख रहा है, उसे अंदर ले आओ। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, अध्याय 16:7, उसके रूप या उसकी लंबाई पर विचार न करना। अब शाऊल के मामले में क्या उन्होंने उसकी ऊंचाई पर विचार किया? उसके रूप या कद का विचार मत करना, क्योंकि मैंने उसे अस्वीकार कर दिया है। परमेश्वर उन चीजों को नहीं देखता जिन्हें मनुष्य देखता है। मनुष्य बाहरी रूप को देखता है, परंतु परमेश्वर हृदय को देखता है। यह कोई मजाक नहीं है। मैंने किसी को एक बार इस अंश को लेते हुए और युवा महिलाओं से यह कहते हुए सुना है, मनुष्य बाहरी रूप को देखता है लेकिन भगवान हृदय को देखता है, लेकिन मनुष्य बाहरी रूप को देखता है। इसलिए प्रिय, बेहतर होगा कि आप अपना ख्याल रखें। मैं बहुत गंभीर हूँ, मैंने किसी को ऐसा कहते हुए सुना। मैं लगभग टेढ़ा हो गया। क्या यह पूरी तरह से इस श्लोक के अर्थ के विरुद्ध है? क्या श्लोक का पूरा बिंदु इसके विपरीत है? क्या भगवान को दिल की परवाह है? क्या लोग बाइबल लेते हैं और बाइबल को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं? और यह उन मामलों में से एक है, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। यह सबसे मूर्खतापूर्ण चीजों में से एक था जिस पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने इसे सुना है, क्योंकि इस अनुच्छेद का मुद्दा यह है कि भगवान दिल को देखता है। प्रश्न, क्या इससे हमें डेविड के बारे में कोई सुराग मिलता है? क्या दाऊद परमेश्वर के हृदय के अनुसार व्यक्ति बनने जा रहा है? दाऊद परमेश्वर के हृदय के अनुरूप व्यक्ति बनने जा रहा है। वैसे क्या इसका मतलब यह है कि डेविड परिपूर्ण है? क्या डेविड को अपनी समस्या का सामना करना पड़ेगा? उसकी भी अपनी समस्याएं होंगी, लेकिन ध्यान दें कि वह ईश्वर के अनुरूप व्यक्ति है। तो यह डेविड को स्थापित करता है। हम उसके दिल को जानते हैं। जे शाऊल और प्रभु की ओर से दुष्ट आत्मा 39:52-41 अब अध्याय 16 श्लोक 13 में क्या होता है? यह कहता है, तब शमूएल ने तेल का सींग जैतून का तेल लिया और अपने भाइयों के सामने उसका दाऊद अभिषेक किया। उस दिन से प्रभु की आत्मा दाऊद पर सर्वशक्तिमान रूप से उतरी। आपको तेल से अभिषेक करने और परमेश्वर की आत्मा का दाऊद पर आने का यह जुड़ाव मिलता है। तुम देखते हो कि यह तेल से अभिषेक और आत्मा का आगमन दाऊद पर उंडेला गया है। क्या कभी कोई आत्मा से अभिषिक्त होने के बारे में बात करता है? आत्मा से अभिषिक्त होने में वह तेल परमेश्वर की आत्मा और अभिषिक्त होने का प्रतिनिधित्व करता है। जब दाऊद का अभिषेक राजा होता है तो परमेश्वर की आत्मा दाऊद पर आती है। परंतु फिर अगला पद कहता है, अब यहोवा की आत्मा शाऊल पर से हट गई थी और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा ने उसे सताया। जब शाऊल ने परमेश्वर की आत्मा को खो दिया तो क्या उसने अपना उद्धार खो दिया? शाऊल का आत्मा उतर गया। क्या वह अपना उद्धार खो देता है क्योंकि आत्मा अब उसके साथ नहीं है? क्या परमेश्वर लोगों पर दुष्ट आत्माओं का प्रकोप करता है? यह कहता है, यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा ने आकर शाऊल को सताया। क्या परमेश्वर लोगों पर बुरी आत्माओं को थोपता है? अब मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले इस बारे में सोचें। पुराने नियम में अब तक क्या आपने कई राक्षसों को इधर उधर भागते देखा है? अब वैसे आप नए नियम, यीशु और राक्षसों में जाते हैं, क्या आपके पास उनमें से बहुत कुछ है? नए नियम में आपके पास हर समय यीशु और राक्षस हैं। क्या आप लोगों ने पुराने नियम में बहुत कुछ पढ़ा है? क्या हमने राक्षसों को देखा है? उत्पत्ति, इब्राहिम, इसहाक, याकूब और यूसुफ में और उसके साथ क्या आपने कोई राक्षस देखा? मूसा राक्षस, यहोशू राक्षस, न्यायाधीश राक्षस। आप इसके माध्यम से काम करते हैं। वहां बहुत अधिक शैतानी गतिविधि नहीं है। क्या यह कह रहा है कि परमेश्वर लोगों पर दुष्टात्माओं को भड़का रहा है? क्या यह पुराने नियम के संदर्भ से बिल्कुल बाहर है? वह वाकई में समस्या क्या है? शाऊल पर दुष्ट आत्मा आ गई। क्या आत्मा शब्द का अर्थ अलग अलग है? वास्तव में अंग्रेजी में भी आत्मा शब्द का अंग्रेजी में अलग अलग अर्थ होता है। आप कहते हैं उस स्कूल में भावना है, क्या आपका मतलब है कि स्कूल में पवित्र आत्मा है? शायद गॉर्डन कॉलेज में यह सच है। वास्तव में वह सचमुच मूर्खतापूर्ण था। मुझे अपनी बात वापस लेने दीजिए, क्षमा करें, मैंने ऐसा कहा, वह गलत था। मैं जो कह रहा हूं वह है, स्कूल में भावना होती है, आपका क्या मतलब है? उनमें उत्साह है ना? उनमें आत्मा है। क्या हम अन्य चीजों के लिए भी आत्माओं शब्द का उपयोग करते हैं? किसी ने पार्टी की थी और कोई वहां स्पिरिट लेकर आया था। हम आत्माओं के बारे में शराब के रूप में बात करते हैं। क्या हम कभी कहेंगे कि आज किसी व्यक्ति का मनोबल टूट गया है? हमारा मतलब क्या होगा? उनका हौसला पस्त हो गया है। क्या व्यक्ति उदास है? क्या हम उसका उपयोग करेंगे? हिब्रू शब्द रुआज का उपयोग हवा और सांस सहित कई चीजों के लिए किया जा सकता है, लेकिन इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की आत्माओं के लिए भी किया जा सकता है। मैं इस संदर्भ का शेष भाग पढ़ते हैं। मुझे नहीं लगता कि यह परमेश्वर द्वारा शाऊल पर दुष्टात्माओं को थोपना है। मुझे लगता है कि इसका बाकी हिस्सा इसे समझाएगा। शाऊल के सेवक ने उससे कहा, देख, परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा तुझे सताती है। अब इस दुष्टात्मा की समस्या का समाधान क्या है? हमारे प्रभु अपने सेवकों को आज्ञा दें कि वे किसी ऐसे व्यक्ति की खोज करें जो वीणा बजा सके। अब वीणा बजाने से क्या मतलब? राक्षसों को वीणा संगीत पसंद नहीं है। यह उन्हें स्वर्ग की याद दिलाता है और वे घबरा जाते हैं। वे कहते हैं, मुझे अपना वह संगीत रखना होगा जिसे वह कहते हैं हेवी मेटल संगीत, या मुझे वह संगीत प्राप्त करना होगा। वह कौन सा राक्षसी संगीत है जिसके साथ वे सहज महसूस करते हैं? रैप और उस जैसा अन्य संगीत या जो भी आप लोग उपयोग करते हैं। लेकिन निश्चित रूप से यदि आप देशी संगीत बजाते हैं तो यह उन्हें पागल कर देता है। तो वीणा संगीत, क्या वास्तव में यहां यही कहा जा रहा है? नहीं, परंतु इस बात पर ध्यान दो कि जब दुष्टात्मा उस पर आ पड़े तब कोई वीणा बजाने वाला ढूंढ लेना। मैं आपसे पूछता हूं, आप में से कितने लोग जब आप उदास होते हैं संगीत सुनते हैं? यहां वही हो रहा है। शाऊल उदास है। वह उदास क्यों है? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा उस पर से उतर गई है और उसे एहसास हो गया है कि वह अब राजा नहीं बनेगा। वह राजा के रूप में अपनी शक्ति खो रहा है और वह इस बात से उदास है। तो वह उदास है, और जब वह उदास होता है तो क्या होता है? वे उसे बेहतर महसूस कराने के लिए एक संगीतकार को बुलाते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि यही बात है। यह कोई बुरी आत्मा राक्षस नहीं है जितना कि वह उदास है। यह अवसाद प्रभु की ओर से आता है। छात्र प्रश्न पूछता है, जब मैं इसे पढ़ रहा था तो यह मुझे अय्यूब के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है और कैसे भगवान ने शैतान को उसे छूने की अनुमति दी। तो इसने मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि यह आवश्यक रूप से ईश्वर की ओर से नहीं बल्कि उस दुष्ट आत्मा की ओर से है जिसे ईश्वर ने अपने पास आने की अनुमति दी थी। हिल्लेब्रांट की प्रतिक्रिया, तो हर कोई देखता है। वह जॉब 1 और 2 में कूद गई जहां शैतान ऊपर और नीचे जा रहा है। संभव है कि हालांकि क्या पुराने नियम में यह वास्तव में दुर्लभ है? मेरा मतलब है अय्यूब के बाहर यह वास्तव में दुर्लभ है। संगीत की बात के साथ मैं संगीत को जोड़ रहा हूं जब मैं कहता हूं कि वह उदास है क्योंकि भगवान ने राजा को हटा दिया है और वह उदास है और इसलिए उसे वीणा वादक मिलता है। वैसे वीणा कौन बजाने वाला है? डेविड। तो क्या डेविड बहुत सारे भजन लिखने जा रहा है? वह एक संगीतकार है। तो आप भजनों में डेविड के बहुत से अंश देखेंगे। लेकिन यह अय्यूब 1 और 2 के साथ एक दिलचस्प संबंध है। अब क्या भगवान लोगों पर बुरी आत्माएं भेजता है? हमने यह कहने की कोशिश की, नहीं, यह अवसाद की तरह है जिसमें संगीत उसकी आत्मा को ऊपर उठा रहा है। तो यहां वही हो रहा है। के पुराने नियम में ईश्वर की आत्मा 45, 42, 46, 23। क्या पुराने नियम में लोगों का परमेश्वर की आत्मा के साथ कोई रिश्ता था? आत्मा शाऊल पर थी और आत्मा उसे छोड़ गई। क्या वह मुक्ति की भावना थी या वह राजत्व की भावना थी? यह आत्मा व्यक्ति पर आ रही थी जिसने व्यक्ति को राजत्व की कृपा से अभिषिक्त किया था। इसलिए जब यह शाऊल को छोड़ देता है तो इसका मतलब है कि राजसत्ता शाऊल को छोड़ रही है और राजसत्ता दाऊद को मिल रही है। आत्मा दाऊद को वे उपहार दे रहा है जिनकी उसे राजत्व के लिए आवश्यकता होगी। तो यह पवित्र आत्मा के अनुदान की तरह मुक्ति नहीं है जैसा कि आप नए नियम में करेंगे, लेकिन परमेश्वर की आत्मा पुराने नियम में बहुत सक्रिय थी। यहां एक मामला है और कई अन्य भी हैं। नए नेता के रूप में एल डेविड की पहली जीत 46-24-58-02, डेविड का इससे क्या लेना देना है? वह अब राजा बन गया है, उसे सबसे पहले क्या करना होगा? उसे जीत हासिल करनी है। डेविड और गोलियत की कहानी डेविड की पहली जीत है। अध्याय 16 में उसका अभिषेक होता है और अध्याय 17 क्या है? डेविड और गोलियत। तो यह इस प्रकार है, डेविड अभिषिक्त राजा है और उसके तुरंत बाद अध्याय 17 में डेविड और गोलियत हैं। मैं बस यह नक्शा सामने लाना चाहता हूं। सबसे पहले यरूशलेम और बेथलेहम। डेविड बेथलेहम से होने वाला है। गोलियत कहां से है? गत का गोलियत। फिलिस्ती यहां से जाने वाले हैं गत, और वे यहां ऊपर जाने वाले हैं। गोलियत और उसके लड़के अजेका से होते हुए एला की घाटी तक यहां से आगे बढ़ेंगे। एला की यह तराई आज के दिन तक वही है। क्या यहूदी मैदानों में हैं या पहाड़ों में छिपे हुए हैं? यहूदी पहाड़ों में छिप जाते हैं क्योंकि पलिश्तियों के पास रथ होते हैं। इस प्रकार पलिश्ती तराई में चढ़ाएंगे और यहूदी पहाड़ों पर छिप जाएंगे। तब गोलियत बाहर जाकर यहूदियों को चिढ़ाने वाला था। यहूदी पहाड़ों में हैं। गोलियत बाहर आता है और उन्हें नीचे आकर उनसे लड़ने की चुनौती देता है। डेविड बाहर जाने वाला है और उसे स्लिंग शॉट लगाना है। वह 5 पत्थर उठाने जा रहा है। दाऊद ने एक के बजाय 5 पत्थर क्यों उठाए? अब ठीक है, उसने इसे सीधे चेहरे से कहा, लेकिन वास्तव में यह एक मजाक है जो मैंने सुना है। दाऊद ने 5 पत्थर उठाए क्योंकि उसने सुना था कि गोलियत के 4 भाई थे। यह एक मजाक है, ठीक है। आपको मुस्कुराना चाहिए। असल में वह चुटकुले सुनाने में मुझसे बेहतर है। वह 5 पत्थर उठाता है। हमें नहीं पता कि उसने 5 पत्थर क्यों उठाए। वैसे यदि आप कभी डॉक्टर एलेन फिलिप्स और उनके पति डॉक्टर पेरी फिलिप्स के साथ इजराइल जाते हैं तो आप एला की घाटी में जाएंगे और आप वास्तव में धारा पार करेंगे और आप 5 पत्थर उठा सकते हैं। धारा, जब मैं धारा कहता हूं तो धारा कितनी चौड़ी होती है? यह जलधारा लगभग 4 फीट चौड़ी है। आप सीधे इसके पार चलें। तो डेविड इसके साथ बाहर जाता है। आइए यहां डेविड की जीत पर आते हैं। डेविड बाहर जाता है और डेविड नीचे आता है। उसे अपने भाइयों के लिए कुछ खाना लाना है। उसके भाई युद्ध में हैं और डेविड उन्हें खिलाने के लिए घर से खाना लेकर आ रहा है। क्या आपने कभी सैनिकों को खाने के लिए खाना भेजा है? क्या आपने कभी के राशन खाया है? क्या सैनिकों को भोजन की आवश्यकता है? हाँ, कभी मुझसे मेरे बेटे के बारे में पूछो और उन्होंने खाने के लिए क्या किया? दाऊद ने पास खड़े मनुष्य से पूछा, जो मनुष्य इस पलिश्ती को मार डालेगा और इसराइल से यह कलंक मिटा देगा उसके लिए क्या किया जाएगा? यह खतनारहित पलिश्ती कौन है जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे? ये 16 साल का बच्चा बोल रहा है। गोलियत बड़ा शेख प्रकार का चरित्र। डेविड 16 साल का छोटा बच्चा है। उन्होंने उसे यह बात दोहराई जब दाऊद के सबसे बड़े भाई एलियाब ने दाऊद को उस मनुष्य से बातें करते देखा, तब वह उस पर क्रोध से जल उठा और पूछने लगा, तू यहाँ क्यों आया है और तूने कुछ भेड़बकरियों को किसके पास छोड़ दिया है? डेविड, तुम भेड़ों के पास वापस क्यों नहीं जाते और जंगल में उनकी देखभाल क्यों नहीं करते? उसका बड़ा भाई एलियाब यह कहता है, मैं जानता हूं कि तू कितना घमंडी है और तेरा हृदय कितना दुष्ट है। आप केवल युद्ध देखने आए हैं, क्या छोटे बच्चे युद्ध देखना पसंद करते हैं? क्या बड़े बच्चों को लड़ाई लड़नी पड़ती है? वे मौत से डरते हैं और मर भी सकते हैं। छोटा बच्चा युद्ध देखने के लिए नीचे आता है। ध्यान दें कि वह डेविड पर अहंकारी होने का आरोप लगाता है। क्या डेविड घमंडी है? क्या उसके शब्द बहुत साहसी हैं और आपके चेहरे पर बहुत अच्छे लगते हैं? लेकिन क्या वह अहंकारी है? मैं सुझाव देना चाहता हूं कि वह नहीं है। उसका बड़ा भाई डेविड के दिल की बात नहीं जानता। दाऊद का भरोसा प्रभु पर है, स्वयं पर नहीं। तो डेविड छूट जाता है या कम से कम उसका भाई उस पर घमंडी होने का आरोप लगाता है, लेकिन डेविड वास्तव में प्रभु पर निर्भर है। दूसरी ओर, क्या शाऊल शुरू में विनम्र दिखता था? लेकिन क्या शाऊल सचमुच विनम्र था? नहीं, शाऊल असुरक्षित था। तो मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि क्या किसी के लिए यह संभव है कि वह विनम्र दिखे लेकिन विनम्र न हो? क्या किसी के लिए ऐसा दिखना संभव है कि उसे गर्व है और उसे गर्व नहीं है? दूसरे शब्दों में, क्या हम किसी दूसरे व्यक्ति के हृदय का न्याय कर सकते हैं? ऐसा प्रतीत हो सकता है कि वे वास्तव में अहंकारी हैं, लेकिन हो सकता है कि हो नहीं। डेविड यहां वास्तव में अहंकारी बयान देते हैं। क्या तुम्हें याद है क्या हुआ था? वह शाऊल के पास गया और शाऊल ने कहा, हे, मेरे हथियार बांध ले। डेविड कवच पहनता है लेकिन वह एक छोटा बच्चा है। मैं इस परतदार जैकेट में नहीं लड़ सकता, इसका वजन 60 पाउंड है, मैं ऐसा नहीं करने जा रहा। इसलिए उसने उसे उतार दिया और शाऊल से कहा, मैंने एक शेर को मार डाला, मैंने भालू को मार डाला जब उन्होंने मेरी भेड़ों पर हमला किया, और मैं पलिश्ती को भी मार डालूंगा। वैसे शेर और भालू को मारना क्या कोई बहुत बड़ी बात है? 30 से 6 या उसके जैसी किसी चीज के बिना क्या यह बहुत बड़ी बात है? यह बहुत बड़ी बात है। तो डेविड बाहर चला जाता है। अब वह बाहर जाता है, लेकिन वह बाहर कैसे जाता है? वह बिना किसी कवच के, गुलेल शॉट और पत्थरों के साथ इस विशाल के विरुद्ध निकलता है। वास्तव में अध्याय 17 श्लोक 41 में विशाल डेविड के साथ बातचीत करता है। इस बीच पलिश्ती ढाल ढोने वाले के साथ बाहर आता है, इसलिए उसने अपनी ढाल ले जाने वाले व्यक्ति को पकड़ लिया। उसके सामने डेविड के करीब आता रहा। उसने डेविड की ओर देखा और पाया कि वह केवल एक लड़का था। तो यहां आपके पास एक बहुत बड़ा आदमी आ रहा है और वे उससे लड़ने के लिए एक लड़के को बाहर भेजते हैं। जब आप एक योद्धा होते हैं तो क्या आप एक योग्य प्रतिद्वंद्वी चाहते हैं? हाँ, मेरे बेटे ने मुझसे इस बारे में अक्सर बात की है। जब वह इराक में थे तो उन्हें इराक में रहने से नफरत होने का एक कारण यह था कि उन्होंने कहा था कि वहां कोई योग्य प्रतिद्वंद्वी नहीं थे। लोग सनकी थे, उनके पास कुछ भी नहीं था। जब वह अफगानिस्तान पहुंचे तो क्या उनके पास वहां योग्य योद्धा थे? हाँ, वास्तव में अफगानिस्तान में उनके पास योद्धा हैं। वैसे भी वह डेविड की ओर देखता है और कहता है, उन्होंने मुझसे लड़ने के लिए एक बच्चे को भेजा है। वह तो लड़का ही था, सुर्ख और सुंदर, और उसने उसका तिरस्कार किया और उसने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू निकल आया? लाठी और पत्थरों वाला छोटा बच्चा, क्या तुम मेरी हड्डियां तोड़ोगे? यह विशाल अभी फर्श पर है और फिलिस्ती ने अपने देवताओं द्वारा दाऊद को शाप दिया। वह कहता है, यहाँ आओ और मैं तुम्हारा मांस आकाश के पक्षियों और मैदान के जानवरों को दे दूंगा। बड़ा आदमी बोल रहा है डेविड। वैसे क्या बच्चों को सुनाने के लिए यह एक बेहतरीन कहानी है? यह कहानी बच्चों पर इतनी अच्छी क्यों असर करती है? क्या बच्चे छोटे लोग हैं जिनके चारों ओर दिग्गज हैं? नहीं, मैं गंभीर हूं। क्या आपने कभी वह फिल्म बिग देखी है? लेकिन वैसे भी यह कुछ ऐसा ही है, छोटे बच्चे और उनके चारों ओर बड़े शरीर। तो छोटे बच्चों के लिए यह एक बेहतरीन कहानी है। अब दाऊद पलिश्ती को जवाब देने जा रहा है। यहाँ दाऊद है, इस बड़े आदमी ने अभी अभी चिल्लाना समाप्त किया है। अब दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तुम तलवार और भाला लेकर मेरे विरुद्ध आते हो, लेकिन मैं प्रभु के नाम पर तुम्हारे विरुद्ध आता हूँ, सर्वशक्तिमान इसराइल की सेनाओं का परमेश्वर, जिसको तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुम्हें मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हारा सिर काट डालूंगा। वे बहुत मजबूत शब्द हैं। और आज मैं पलिश्तियों को शव दूंगा। वह आगे कहता है, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि इसराइल में एक भगवान है। लड़का करीब आता है और डेविड क्या करता है? वह अपना गुलेल निकालता है और उसके माथे पर मारता है और उसे नीचे गिरा देता है। अब उसके माथे के पत्थर ने उसे मारा या नहीं, उसने उसे नीचे गिरा दिया। फिर डेविड क्या करता है? वह ऊपर जाता है। वैसे क्या यहूदियों के पास तलवारें थीं? क्या आप जानते हैं कि पलिश्तियों का लोहा उत्पादन पर एकाधिकार था? इसलिए हथियार पलिश्तियों द्वारा बनाए गए थे। यहूदियों के पास धातु और धातुकर्म संबंधी जानकारी का अभाव था। इसलिए दाऊद ने गोलियत की अपनी तलवार ले ली और उसका सिर काट दिया। अब सौदा क्या है? ये सुनने में वाकई अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। पुरातत्वविदों को एक बड़ा सिर मिला है, सिर्फ सिर, एक पत्थर से जिसने खोपड़ी को तोड़ दिया और खोपड़ी को विभाजित कर दिया। यह सच्ची सच्चाई है, मैं यह बात नहीं बना रहा हूं। एक पत्थर लड़के के माथे में मृत केंद्र और इससे उसकी खोपड़ी फट गई और उन्होंने वास्तव में इसे ढूंढ लिया है। मुझे यकीन नहीं है कि इसकी सटीक तारीख क्या है, लेकिन उन्हें सिर्फ एक सिर मिला, एक पत्थर के साथ एक बहुत बड़ा सिर। सिर के ठीक बीच में मृत केंद्र था। अब आप कह रहे हैं, हिल्डेब्रांट, आप यह नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने गोलियत पाया है? नहीं नहीं, मैं उससे पीछे हट रहा हूँ। क्या यह दिलचस्प नहीं है कि उन्हें एक व्यक्ति मिला जिसकी खोपड़ी टूटी हुई थी, उसकी खोपड़ी को पत्थर से फोड़ दिया गया और वास्तव में उन्हें पुरातात्विक रूप से एक खोपड़ी मिली? मैं यह नहीं कह रहा कि यह गोलियत है। क्या यह कहना वास्तव में मूर्खता होगी कि यह गोलियत है? यह कहना वास्तव में मूर्खतापूर्ण होगा कि यह गोलियत है। अब मैं बस इतना कह रहा हूं कि आप देख सकते हैं कि गुलेल से लोगों ने बड़े बड़े लोगों को पत्थरों से मार गिराया, जिससे उनकी खोपड़ी टूट गई। यह आकर्षक है, यह बिल्कुल आकर्षक है, उन्हें ऐसा कोई मिल गया है। हालांकि मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह गोलियत है, इसलिए आपको पीछे हटना होगा। हन्ना, छात्र पूछता है, हाँ आपको सावधान रहना होगा, हाँ आंकड़ों पर कुछ बहस है। यहाँ धर्मग्रंथ में आंकड़े हैं कि वह 9 फीट लंबा है या उसके जैसा कुछ है। मेरा मतलब है कि शेख भी इतना लंबा नहीं है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि यह जो माप रहा है वह उसके सिर के टुकड़े और उसके पूरे सैन्य उपकरण के साथ है, जो शायद उससे भी ऊपर चला गया होगा। लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि यह आदमी बड़ा है। यह शायद उसके सिर की पोशाक के ऊपर का हिस्सा है जिसे वे माप रहे थे। एलेक्सेक्स में वह 6 फुट 9 इंच का है। इसलिए दाऊद का धार्मिक क्रोध और भाई बहन की ईर्ष्या उस पर गलत इरादों का आरोप लगाती है कि वह सिर्फ युद्ध देखना चाहता था। फिर हमने दैत्य के बाहर आने और डेविड द्वारा दैत्य को गुलेल से नीचे गिराने और उसका सिर काट लेने की कहानी पढ़ी। वैसे क्या वह तलवार डेविड के लिए खास होगी? डेविड ने गोलियत को मार डाला और बाद में डेविड उस तलवार पर वापस आने वाला है। हम जल्द ही यहां ऐसा होते हुए देखेंगे। तो क्या होता है? डेविड लड़ाई जीत गया। महिलाएं हमेशा परेशानी खड़ी करती हैं, इसलिए वे विजय गीत गाते हुए निकलते हैं। वे जो विजय गीत गा रहे थे वह अध्याय 18 श्लोक 7 है, शाऊल ने हजारों को मार डाला और दाऊद ने क्या? दसियों हजारों की शाऊल यह सुनता है और शाऊल के साथ क्या होता है? शाऊल हजारों को मारता है और दाऊद हजारों को। शाऊल को दाऊद से ईर्ष्या होने लगी। क्या ईर्ष्या हत्या का कारण बनती है? मुझे लगता है कि मैंने आप लोगों को बता दिया है कि मैंने 10 वर्षों तक अधिकतम सुरक्षा वाली जेल में पढ़ाया है। वहां ब्रायन नाम का एक लड़का है जो मूल रूप से लगभग 19 साल का था और उसकी लड़की किसी और के साथ भाग गई थी। युवक ने क्या किया? वह युवक इस आदमी से ईर्ष्या करता था। वह एक बंदूक लाया और उसे उड़ा दिया, उसे मार डाला। उन्होंने 25 साल जेल में बिताए। मुझे लगता है कि यह कई साल थे। वह अब बाहर है। वास्तव में वह एक अद्भुत विश्वासी व्यक्ति है, वास्तव में एक डायनामाइट व्यक्ति है। लेकिन क्या ईर्ष्या लोगों को मारने के लिए प्रेरित करती है? इसलिए शाऊल को दाऊद से ईर्ष्या होने लगी क्योंकि शाऊल ने हजारों को मार डाला और दाऊद ने लाखों को। शाऊल को ईर्ष्या होने लगती है और गाने से शाऊल पागल हो जाता है और वह डेविड के पीछे चला जाता है। एम शाऊल द्वारा डेविड को मारने का प्रयास 58:03-62:27। अब यहां बताया गया है कि पुराने नेता का पतन कैसे होगा। शाऊल ने दाऊद को मारने का प्रयास किया। वह डेविड को कई तरीकों से मारने की कोशिश करने जा रहा है। पहला तरीका वह अपनी बेटी मीकल के माध्यम से आजमाता है। आप लोग उसका नाम कैसे उच्चारण करेंगे? मुझे नहीं पता कि इसे अंग्रेजी में कैसे उच्चारित किया जाता है, इसलिए मैं सिर्फ मीकल कहूंगा, हिब्रू की तरह मीकल। उनके पास एक गाना होता था, मीकल मीकल माई बेले। वैसे भी इसलिए शाऊल की बेटी मीकल दाऊद से प्रेम करने लगी। सुंदर वस्तु। जब शाऊल को इसके बारे में बताया गया तो उसे खुशी हुई। उसने कहा, मैं उसे दे दूंगा। उसने सोचा ताकि वह उसके लिए जाल बन जाए। वह डेविड को मारने के लिए डेविड के प्रति अपनी बेटी के प्यार का इस्तेमाल करने जा रहा है। क्या यह आदमी दुष्ट है? तो वह क्या करता है? डेविड सामने आता है और उसे एहसास होता है कि यह एक बड़ी बात है जब आप राजा की बेटी से शादी करते हैं। जब आपकी शादी हो तो आपके पास क्या होना चाहिए? सभी लोग यह जानते हैं, आपके पास भी यही चीज होनी चाहिए। जब किसी लड़के की शादी होती है तो उसके पास किसी से शादी करने के लिए पैसे होने चाहिए। आपके पास भुगतान करने के लिए दहेज होना चाहिए। तो डेविड सामने आता है। डेविड एक गरीब आदमी है और इसलिए साइमन और गारफंकेल के शब्दों में अध्याय 18 श्लोक 23 में भी उन्होंने इन शब्दों को दोहराया। दाऊद ने कहा, क्या तुम सोचते हो कि राजा का दामाद बनना कोई छोटी बात है? मैं सिर्फ एक गरीब लड़का हूं और मेरी कहानी शायद ही कभी बताई जाती है और वह चला जाता है। मुझे खेद है, यह वास्तव में साइमन और गारफंकेल से लिया गया था। उसने कहा, मैं केवल एक गरीब आदमी हूं और अल्पज्ञात हूं। और डेविड कहता है, मेरे पास इस राजा को भुगतान करने के लिए कोई पैसा नहीं है। मैं राजा की बेटी के लिए राजा के दहेज के साथ कैसे आ सकता हूं? राजा कहता है, कोई बात नहीं डेविड, मैं इसका ध्यान रखूंगा। मुझे बस 100 फिलिस्तीनियों की खलडियां चाहिए, तो डेविड बाहर जाता है, एक छोटी बाल्टी और एक छोटी घंटी लगाता है और वह कहता है, दान दान। पलिश्ती की खलड़, पलिश्ती की खलड़ और पलिश्तियों ने आकर ये सब खलडियां दान कर दी और दाऊद लौट गया। आप नहीं, आप कहते हैं, हिल्डेब्रांट, यह सचमुच बहुत बुरा है, मुझे यह कल्पना सूझी, मैं नहीं जानता। मेरा हमेशा से यही रवैया रहा है। अब शाऊल जानता है एकमात्र तरीका क्या है जिससे दाऊद पलिश्ती चमड़ी प्राप्त कर सकेगा। केवल एक ही रास्ता है जिससे वह इसे प्राप्त कर सकेगा। उसे क्या करना होगा? उसे एक पलिश्ती को मारना होगा। उसे 100 फिलिस्तीन चमड़ी के साथ आना होगा। क्या इसका मतलब यह है कि डेविड 100 लोगों के खिलाफ जाएगा? क्या यही समस्या है? क्या उन लोगों में से कोई उसे बाहर ले जाएगा? 100 पलिश्तियों में से शाऊल का यही अनुमान है। डेविड क्या करता है? डेविड शतक के साथ नहीं, बल्कि 200 के साथ वापस आए। क्या यह सचमुच घटिया है? अब कोई है, मैं भूल गया, यह कुछ साल पहले की बात है। छात्र पिछली पंक्ति में बैठता था, अधिकांश समय बच्चा कक्षा छोड़ देता था, पाठ्यक्रम में क्या हुआ इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था, और वह अंदर आता है और कहता है, डेविड ने पलिश्तियों को मार डाला, इस तरह, वह दुष्ट है, उसने बस उन्हें मार डाला और उनकी चमड़ी फेंक दी। डेविड के ऐसा करने के लिए बाइबल दुष्ट है। प्रश्न, क्या डेविड जो कुछ भी करता है वह ईश्वर द्वारा स्वीकृत है? क्या डेविड ने ढेर सारी चीजें की जो अच्छी थी और कुछ चीजें जो खराब थी? क्या वे पलिश्तियों से युद्ध कर रहे हैं? वे पलिश्तियों के साथ युद्ध में हैं, इसलिए मुझे नहीं पता कि हमें कितना औचित्य सिद्ध करने की आवश्यकता है। वही हुआ, राजा को यही चाहिए था, दाऊद ने वही किया। इसमें कोई टिप्पणी नहीं है, यह सिर्फ इतिहास है, लोग बुरी चीजें करते हैं। आपको उसमें से कुछ पर आराम करना होगा। अब दूसरे तरीके से शाऊल दाऊद को मारने की कोशिश करता है। डेविड वीणा बजा रहा है। शाऊल उदास महसूस कर रहा था और दाऊद वीणा बजा रहा था। शाऊल ने अपना भाला पकड़ लिया और वह क्या करता है? वह डेविड पर अपना भाला चलाता है। क्या डेविड एक योद्धा है? डेविड वीणा बजाता है, लेकिन क्या वह उसी समय भाले से भी बच सकता है? यह आदमी तेज है, भाला उस पर आता है, वह भाले से बच जाता है, गोली से बच जाता है, ऐसा कहा जा सकता है। अब क्या होता है? इसलिए वह अध्याय 19 में इससे बच जाता है, जहां शाऊल वास्तव में उसे भाले से मारने की कोशिश करता है। तब मीकल, उसकी पत्नी, उसके बिस्तर में एक मूर्ति रखती है, उसे चादरों से ढक देती है। शाऊल सोचता है, वह डेविड को मारने जा रहा है, वह चादरें पीछे खींचता है, और वहां क्या है? यह मूर्ति, यह आपको माइकल के बारे में क्या बताता है? क्या उसके पास मूर्तियां थीं? क्या शाऊल के परिवार के पास वहां मूर्तियां थीं? यह बस आपको बताता है, क्या यहोवा की आराधना शुद्ध थी या ये सभी परिवार गड़बड़ हैं? तो आपके पास मीकल की मूर्ति है, जिसे वह दाऊद को छिपाने के लिए मूर्ति का उपयोग करती है, और दाऊद शाऊल से दूर हो जाता है। इसलिए शाऊल ने कम से कम उस समय उसे मारने की कोशिश की। एन जोनाथन ने डेविड को चेतावनी दी, 62:28-62:52। अब यह डेविड और जोनाथन से संबंधित पवित्र शास्त्र की सबसे सुंदर कहानियों में से एक है। जोनाथन जानता है कि उसके पिता डेविड को मारने की कोशिश करने वाले हैं। जोनाथन को संदेह है। कभी नहीं, जोनाथन ने उत्तर दिया, आप मरने वाले नहीं हैं। देखो, मेरे पिता मुझ पर विश्वास किए बिना कोई भी बड़ा या छोटा काम नहीं करते हैं। जोनाथन कहते हैं, वह यह बात मुझसे क्यों छिपाएंगे? ऐसा नहीं है। डेविड कहते हैं, और फिर भी निश्चित रूप से प्रभु के जीवन की शपथ, और आपके जीवन की शपथ मेरे और मृत्यु के बीच केवल एक कदम है। इसलिए दाऊद और जोनाथन वहां चले गए। मैं अभी कहानी सेट करते हैं। जोनाथन अपने धनुष और तीर के लिए जाना जाता है। डेविड एक स्लिंग शॉट लड़का है। जोनाथन बाहर जाता है, वह धनुष चलाने का अभ्यास करने जा रहा है। जब वह धनुष चलाने का अभ्यास करता है तो वह डेविड को बताता है और वे सिग्नल सेट कर देते हैं। क्या दोस्त कभी सिग्नल सेट करते हैं? वह कहते हैं, अगर मैं बच्चे को इससे आगे जाने के लिए कहूं तो मैं चूक गया, आपको तीर लेने के लिए वापस जाना होगा, बच्चे को बाहर जाना होगा और तीर लेना होगा। वह धनुष चलाएगा, बच्चा तीर का पीछा करेगा और उसे वापस लाएगा। अगर मैं बच्चे से कहूं आगे बढ़ो तो उसने कहा कि अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरे पिता तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे। इसलिए उन्होंने सिग्नल स्थापित किया। जोनाथन अंदर जाता है और अपने पिता से बात करता है। तुम्हें पता है उसके पिता क्या करते हैं? उसके पिता एक भाला उठाते हैं और उसे जोनाथन पर मारते हैं। वह जोनाथन पर बहुत क्रोधित होते हैं। तो अब जोनाथन जाता है और वह कहता है, वह डेविड को मारने की कोशिश करने जा रहा है। तो वह बाहर जाता है, धनुष चलाता है, तीर चला जाता है। जोनाथन लड़के से कहता है, आगे बढ़ो, और डेविड जानता है कि यह खत्म हो गया है। इस बिंदु पर उनकी दोस्ती खत्म हो गई है। तो डेविड और जोनाथन जानते हैं कि डेविड को आगे बढ़ना होगा। वे एक दूसरे को देखने नहीं जा रहे हैं। लड़के के चले जाने के बाद, यह अध्याय 20 श्लोक 41 है। लड़के के जाने के बाद दाऊद पत्थर के दक्षिण की ओर से उठा और अपना मुंह जमीन पर झुकाकर जोनाथन को 3 बार दंडवत किया। फिर उन्होंने एक दूसरे को चूमा और रोए, परंतु दाऊद सबसे अधिक रोया। तो आपको डेविड पर इस तरह की टिप्पणी मिलेगी, उन्होंने एक दूसरे को चूमा और रोए, और डेविड सबसे ज्यादा रोए। योनातान ने दाऊद से कहा, कुशल से चला जा, क्योंकि हमने यहोवा के नाम से एक दूसरे से मित्रता की शपथ खाई है, और यहोवा तेरे और मेरे बीच और तेरे वंश और मेरे वंश के बीच सदैव साक्षी रहेगा। क्या दाऊद बाद में इस प्रतिज्ञा के प्रति सच्चा होगा जो उसने जोनाथन के वंशजों की देखभाल करने के लिए जोनाथन के साथ की थी? क्या किसी को योनातान का पुत्र मपीबोशेत याद है जो दोनों पैरों से लंगड़ा था? जोनाथन की मृत्यु के काफी समय बाद डेविड जोनाथन के बेटे की देखभाल करता है। डेविड इसका ख्याल रखता है। क्या तुम लोगों ने कभी सगे भाइयों के बारे में सुना है? अब तुम लोग अपनी उम्र में ऐसा मत करो, क्योंकि किसी को भी किसी के साथ खून साझा नहीं करना चाहिए। मैं इसकी अनुशंसा नहीं करता, लेकिन जब मैं छोटा था तो हमारे पास ऐसा नहीं था। तो डेव रेम्स मेरा सगा भाई है। इसलिए जब हम छोटे थे तो आप खुद को काटते थे और फिर एक दूसरे के साथ खून साझा करते थे। फिर वह जीवन भर के लिए मेरे सगे भाई के समान है। नहीं, गंभीरता से, और इसलिए आपके पास यह है। डेविड और जोनाथन वास्तव में घनिष्ठ हैं। पुरुष मित्रता, सीएफ रूथ। अब यहां कहानी में समस्या यह होने वाली है कि वे इस बिंदु पर अलग हो गए हैं। अगली बार हम जोनाथन को तब देखने जा रहे हैं जब वह मर रहा होगा। यह थोड़ा दुखद है, लेकिन दोस्त इसी के लिए होते हैं। वह डेविड को चेतावनी देने की कोशिश कर रहा है। ओ डेविड का भागना और शाऊल से छिपना, 65:53-23। अब डेविड भागने वाला है। डेविड को पता चलता है कि जोनाथन ने उससे कहा था, शाऊल तुम्हें मारने की कोशिश करेगा। डेविड भागने वाला था, इसलिए डेविड भागने लगा। यहाँ एक नक्शा है जिसमें मैं उन 4 स्थानों से होकर गुजरना चाहता हूँ जहाँ डेविड दौड़ने जा रहा है, और हम बाद में कथा के साथ इसका पीछा करेंगे। आइए मैं आपको मानचित्र पर दिखाता हूँ कि यह कहाँ है। सबसे पहले डेविड अनाथोथ तक गया। आपकी बाइबल में इसे नोप कहा गया है। क्या किसी को नोप के याजकों की याद है जिन्होंने दाऊद की रक्षा की थी? इसलिए दाऊद नोप के याजकों के पास जाने वाला है। शाऊल यहां से दाऊद नोब के याजकों के पास जाता है। वे उसे गोलियत की तलवार देने जा रहे हैं और वे उसकी रक्षा करने जा रहे हैं, परंतु तब नोब के सभी याजक मारे जाएंगे, उनमें से 85 मारे जाएंगे। तब दाऊद वहां से भाग गया, वह गत को भाग गया। अब वह वास्तव में मूर्खतापूर्ण क्यों था? वह गोलियत का गृहनगर है। आपने अभी अभी उनके शहर से बड़े आदमी को बाहर निकाला है। वह संभवतः अब तक का सबसे बड़ा लड़का है और डेविड ने उस लड़के को बाहर निकाला और उसका सिर काट दिया। दाऊद गत को जाता है और फिर नगर में जाकर कहता है, अरे मैं अब पलिश्तियों के साथ भाड़े का यहूदी सैनिक बनना चाहता हूँ। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, बहुत उज्ज्वल नहीं, मुझे नहीं पता। एक समस्या है, मुझे नहीं लगता कि यह डेविड द्वारा उठाया गया अब तक का सबसे शानदार कदम था। इसलिए वह गैत के पास जाता है जो विभिन्न कारणों से काम नहीं करता है। इसलिए दाऊद ने उसे कीला नामक स्थान तक पहुंचाया। कीला शहर, यहीं पर मुझे पहली बार पवित्र शास्त्र में कुछ चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। क्या आप जानते हैं कि मैं कैसे हमेशा इस बात पर जोर देता हूं कि कई संभावित भविष्य हैं? मैं तुम्हें कीला में पाठ में दिखाऊंगा। डेविड भगवान से पूछने जा रहा है कि क्या शाऊल नीचे आता है, और वह भगवान से भविष्य के बारे में कुछ बातें पूछता है, और ऐसा लगता है कि यहां कीला में कई भविष्य हैं। हम एक मिनट में उस पर गौर करेंगे। शाऊल यहां आने वाला था। पलिश्तियों ने चढ़कर कीला पर आक्रमण किया। दाऊद कीला नगर को पलिश्तियों से बचाता है। इसलिए डेविड को शहर का हीरो होना चाहिए, लेकिन अगर उन्हें मौका मिला तो वे उसे धोखा देंगे। अंत में डेविड कारमेल तक जाता है जो जुडियन रेगिस्तान में है। नाबाल नाम का एक लड़का है जिसकी पत्नी का नाम है। क्या किसी को पत्नी का नाम याद है? अबीगैल। यहीं पर नाबाल और अबीगैल और वह पूरी स्थिति डेविड के साथ कारमेल में घटित होती है। इसलिए दाऊद शाऊल के पास से भागने वाला है क्योंकि शाऊल उसे मारने की कोशिश कर रहा है, और दाऊद इन चार स्थानों पर भागने वाला है। मैं जो करना चाहूंगा वह बस उन स्थानों पर जाना है और उनमें से प्रत्येक पर जाना है, और उन पर विस्तार से जाने के बजाय केवल कहानियों का सारांश देना है। पीनोब 68:24-70-27। अध्याय 21 में डेविड इस शहर नोब शहर में जाता है। नोब क्वाड पर फिट हो सकते हैं। ये छोटे शहर हैं। वह नोब जाता है जो एक पुरोहित नगर है। उनके पास गोलियत की तलवार है। क्या डेविड के पास हर तरह की तलवारें हैं? डेविड के पास सभी प्रकार की तलवारें नहीं हैं, क्योंकि पलिश्तियों का लोहे के काम पर नियंत्रण है, इसलिए बहुत अधिक धातु नहीं है। डेविड को गोलियत की तलवार मिलती है। उसके सैनिकों को पुजारियों से भोजन मिलता है। याजकों के पास किस प्रकार की रोटी थी? याजकों के पास पवित्र रोटी होती है, और इसलिए नोब के याजक दाऊद के लोगों को देते हैं। जो अशुद्ध प्रकार के लोग थे वे उन्हें वह भोजन देते हैं जिसे केवल याजकों को खाना चाहिए। और फिर क्या होता है? जब डेविड चला जाता है तो उसे खाना खिला दिया जाता है। अब उसके पास गोलियत की तलवार है, और जब वह चला जाता है तो कौन आता है? शाऊल वास्तव में वहां से सड़क के ठीक नीचे है। मुझे नहीं पता, वहां से 5 से 10 मील दूर है। शाऊल प्रकट होता है। नोब के 85 पुजारी हैं। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, तुम वहां जाओ और उन पुजारियों को मार डालो। उन याजकों ने मेरे विरुद्ध दाऊद की और दाऊद की सहायता की। शाऊल की सेना ने क्या कहा? हम ऐसा नहीं कर रहे हैं शाउल, ये लोग भगवान के पुजारी हैं। हम वहां जाकर इन लोगों को मारने नहीं जा रहे हैं, इसलिए उसके सैनिकों ने अंदर जाने से इनकार कर दिया। तो शाउल क्या करता है? वह एडोमाइट डोएग नामक एक व्यक्ति से बात करता है और वह कहता है, तुम अंदर जाओ और नोब के 85वें पुजारी को मार डालो। पुजारी असहाय थे। एडोमाइट किसका वंशज है? अब तक आपको यह पता चल जाना चाहिए, एसाव का वंशज। जब भी आप पवित्र शास्त्र में एदोमियों को देखते हैं, तो एदोमियों ने यहूदियों के साथ क्या किया? उन्होंने उन्हें मार डाला। सबसे प्रसिद्ध एडोमाइट कौन है जिसे आप जानते हैं? तुम सब इस व्यक्ति को जानते हो, हेरोदेस, राजा हेरोदेस, जिसने बेथलहम में शिशुओं को मार डाला था। वह एक इदुमी था जो एदोमियों के वंशज थे। इसलिए डोएग एडोमाइट ने नोब के 85 पुजारियों को मार डाला। वास्तव में बुरा दृश्य। दाऊद भाग जाता है, वह भाग जाता है, परंतु याजक नोब में मर जाते हैं। प्र डेविड गैथ में 70:28-73:24 डेविड फिर गैथ की ओर दौड़ता है। वह गैथ में जाता है और यह वास्तव में एक मजेदार कहानी है। यहाँ एक सैमुअल में अध्याय 21 के दूसरे भाग में है। डेविड शहर में आता है, वह इन लोगों के साथ मार्च करता हुआ आता है, उसके साथ ये सभी योद्धा हैं। अरे, हम तुम्हारे साथ पलिश्तियों से जुड़ना चाहते हैं। हम आप लोगों के लिए भाड़े के सैनिक होंगे। नगर की स्त्रियां यह गीत याद करती हैं, शाउल ने हजारों को और दाऊद ने लाखों को घात किया है। तो वे कहते हैं, क्या यह वही दाऊद नहीं है जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि उसने लाखों लोगों को मार डाला है और आप उसे हमारी सेना में शामिल करने जा रहे हैं? अचानक डेविड को एहसास हुआ कि यह बहुत बुरा हो रहा है, तो वह क्या करता है? वह दिखावा करता है कि वह पागल है। इसमें कहा गया है कि लार उसकी दाढ़ी से नीचे जाती है और वह खुद पर थूक रहा है, जैसे मैं इसे यहां कर रहा हूं। यह उनके चेहरे पर आ रहा है और वे कहते हैं, यह आदमी पागल है, यह आदमी पागल हो गया है, हम उसके साथ खिलवाड़ क्यों करेंगे? वैसे क्या लोग कभी इस तरह पागलपन का इस्तेमाल करते हैं? क्या यह डेविड की ओर से एक बहुत ही स्मार्ट कदम था? हाँ, क्योंकि चीजें उसके खिलाफ हो रही थीं और शायद वह वहीं मारा जाता। जब वह दिखावा करता है कि वह पागल है, तो मैं आपको जेल की एक और कहानी सुनाता हूँ। यह अधिकतम सुरक्षा वाली जेल है। दीवारें 40 फीट ऊंची हैं और शीर्ष पर कांटेदार तार हैं। वे लगभग 10 फीट मोटी थीं। इसे 1800 के दशक में बनाया गया था। जेल में एक आदमी है जो दीवार पर चढ़ जाता है। यह कोई मजाक नहीं है। हर दिन यह आदमी दीवार पर चढ़ जाता है और चिल्लाता है। वह जेल की दीवार तक चला जाता था और दीवार पर चिल्लाता था। जेल में सभी लोग, वहां हर कोई पागल है, ठीक है, लेकिन क्या वहां कोई पागल है? यह आदमी पागल था। आप पूरे दिन दीवार पर चढ़कर चिल्लाते नहीं हैं और दिन ब दिन ऐसा ही करते हैं। तो जेल में हर कोई जानता था कि यह आदमी पागल जैसा है। अब सवाल यह है कि क्या आप पागल लोगों से खिलवाड़ करते हैं? आप एक बड़े आदमी हैं, मैं दिन में 8 घंटे वजन उठाता हूं, मैं एक बड़ा और मजबूत आदमी हूं। प्रश्न, वह पागल है, क्या आप उसके साथ खिलवाड़ करते हैं? क्या आप किसी पागल व्यक्ति को डरा सकते हैं? प्रश्न, मान लीजिए कि वह एक छोटा लड़का है, एक पागल छोटा आदमी है, क्या यह संभव है कि वह किसी प्रकार का हथियार निकाल ले और आपको चिपका ले, क्योंकि वह बिल्कुल पागल है? उसे इसकी परवाह नहीं है कि आप कितने बड़े हैं, क्योंकि वह पागल है। वह डर नहीं जानता, क्योंकि वह मूर्ख है। तो इससे पता चलता है कि लोग पागल लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं करते, यहां तक कि जेल में भी नहीं। दरअसल मेरी कक्षा में कुछ लोग थे जो सोचते थे कि यह लड़का बिल्कुल भी पागल नहीं है। उन्होंने सोचा कि वह सिर्फ पागल होने का नाटक कर रहा था क्योंकि वह किसी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता था। अब डेविड पागल होने का नाटक करता है और क्या यह काम करता है? प्रश्न, यदि आप किसी पागल व्यक्ति को मार देते हैं तो क्या होता है? प्राचीन काल में वे बहुत अंधविश्वासी थे। यदि वह पागल है और आप उसे मार देते हैं तो उसके पास जो कुछ है वह आप पर आ सकता है, इसलिए आप पागल लोगों को अकेला छोड़ दें। आप नहीं चाहते कि उन्हें जो मिला है, इसलिए आप उन्हें दुख न पहुंचाएं। कहीं ऐसा न हो कि जो कुछ उन्हें मिला है वह आप पर आ जाए। तो यह सहानुभूतिपूर्ण जादू की एक तरह की धारणा है। आप इसे अकेला छोड़ दें ताकि यह आप पर न आए। तो वास्तव में डेविड का वहां जाना बहुत आसान है, लेकिन मेरी राय में पहली बार में ही वहां जाना मूर्खतापूर्ण है। किला में आर डेविड ईश्वर और अनेक भविष्य 73, 25, 77, 41, इसके बाद वह किला जाता है और यह अध्याय 23 में है। किला शहर में और मुझे बस कहानी सुनाने दीजिए। किला शहर पर पलिश्तियों द्वारा हमला किया जा रहा है, इसलिए पलिश्ती किला के इस छोटे से शहर पर हमला कर रहे हैं। दाऊद और उसके लड़के वहां गए और उन्होंने इस नगर को पलिश्तियों से छुड़ाया। इस प्रकार दाऊद ने इस नगर को पलिश्तियों के आधिपत्य से मुक्त कराया और नगर को छुड़ाया। तब दाऊद यहोवा के पास आता है और कहता है, एपोद निकालो, और कहता है, मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हे इसराइल के परमेश्वर, यह अध्याय 23 श्लोक 10 है। हे इसराइल के परमेश्वर, तेरे दास ने निश्चय सुना है कि शाऊल ने मेरे कारण कीला में आकर कीला नगर को नष्ट करने की योजना बनाई है। क्या कीला के नागरिक मुझे उसके हवाले कर देंगे? क्या शाऊल नीचे आएगा जैसा तेरे दास ने सुना है? तो डेविड ने कहा, हे भगवान, मेरे पास दो प्रश्न हैं। क्या शाऊल मुझे मार डालने के लिए यहां आएगा? और दूसरी बात, यदि वह नीचे आता है तो क्या नगर मुझे शाऊल के हाथ सौंप देगा या वे मेरी रक्षा करने का प्रयास करेंगे? परमेश्वर कहते हैं, डेविड, शाऊल नीचे आएगा। नंबर दो, वे तुम्हें शाऊल के पास पहुंचा देंगे। डेविड क्या कहते हैं? भगवान का शुक्र है, मैं यहां से बाहर हूं। डेविड उड़ान भरता है। परंतु परमेश्वर ने कहा, शाऊल आएगा और वे तुझे पकड़वा देंगे। क्या ऐसा कभी हुआ? शाऊल नीचे आया, क्या उन्होंने दाऊद को पकड़वाया? नहीं, क्योंकि डेविड ने जल्दबाजी की और वहां से निकल गया। तो क्या परमेश्वर ने दाऊद को कुछ ऐसा बताया जो कभी हुआ ही नहीं? यदि दाऊद नगर में रहता तो क्या उसे पकड़वा दिया जाता? हाँ, लेकिन डेविड ने कहा, ठीक है, अब जब मुझे पता है कि वे मुझे पकड़वा देंगे तो मैं यहां से जा रहा हूं। इसलिए परमेश्वर ने उसे कुछ बताया जो भविष्य में संभव था, लेकिन डेविड ने एक अलग दिशा चुनी ताकि ऐसा कभी न हो। क्या ईश्वर उन संभावनाओं को जानता है जो कभी घटित नहीं होती? अब यदि दाऊद वहां रहता तो ऐसा हो जाता, लेकिन डेविड ने कहा, मैं मूर्ख नहीं हूं, अगर वे मुझे सौंपेंगे तो मैं यहां नहीं रहूंगा, मैं यहां से जा रहा हूं। तो भगवान ने उसे यहां कुछ ऐसा बताया जो कभी नहीं हुआ था। तो ये है कीला की स्थिति। मुझे लगता है कि इससे पता चलता है कि ईश्वर उन चीजों को जानता था जो कभी नहीं हुई। वह भविष्य की ऐसी बातें जानता है जो आकस्मिक हैं। दूसरे शब्दों में, वे इस पर निर्भर करते हैं कि क्या होता है, और जाहिर तौर पर कई भविष्य हैं। डेविड ने वहां रुककर नहीं बल्कि वहां से निकलकर बातचीत करने का फैसला किया और इस तरह शाऊल को सौंपे जाने से बच गया। तो क्या ईश्वर केवल वही जानता है जो है, या ईश्वर जानता है कि क्या संभव है? मैं जो सुझाव दे रहा हूं वह यह है कि ईश्वर न केवल जानता है कि क्या है, बल्कि वह यह भी जानता है कि क्या संभव है। लाखों संभावनाएं हैं। इसलिए कि ईश्वर की सर्वज्ञता केवल एक विलक्षण भविष्य को जानने में विलक्षण नहीं है, बल्कि ईश्वर की सर्वज्ञता अविश्वसनीय है। भविष्य की कई संभावनाएं, लाखों संभावनाएं, ईश्वर उन सभी को जानता है। तो अंततः और इस बिंदु पर आप स्पष्ट रूप से मुझसे असहमत हो सकते हैं, कुछ लोगों के पास भविष्य को देखने का अधिक नियतात्मक तरीका होता है। मेरा मानना है कि इससे विकल्प और स्वतंत्रता की खुली संभावना पैदा होती है और मनुष्य विकल्प चुन सकता है और मनुष्य भविष्य को आकार देने में मदद कर सकता है। मुझे यशायाह अध्याय 40 श्लोक 28 पसंद है। परमेश्वर यह कहता है, कोई मेरी समझ नहीं समझता। क्या हम जानते हैं कि ईश्वर भविष्य को कैसे जानता है? क्या ईश्वर भविष्य को उसकी समस्त संभावनाओं की समृद्धि के साथ जानना चुन सकता है? क्या ईश्वर भविष्य को एकवचन के रूप में जानना चुन सकता है? तो मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि हम नहीं जानते कि भगवान भविष्य को कैसे जानता है, और मैं सिर्फ लोगों का समर्थन करना चाहता हूं क्योंकि कुछ लोग इस पर बहुत हठधर्मी हैं। वे कहते हैं कि ईश्वर सब कुछ जानता है, और वे सोचते हैं कि वे वही जानते हैं जो ईश्वर जानता है। मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि हम नहीं जानते कि ईश्वर भविष्य को कैसे जानता है। यहां वह कुछ ऐसा जानता था जो कभी नहीं हुआ था, और फिर भी वह जानता था कि अगर डेविड वहां रहता तो क्या होता। तो उससे सावधान रहें। कार्मेल में एस डेविड, अबीगैल और नाबाल 77:42-81-36। अब अबीगैल और नाबाल अध्याय 25 में हैं। यहां नाबाल और अबीगैल के साथ एक दिलचस्प कहानी है। मुझे इसे जल्दी से पूरा करने दीजिए ताकि हम यह सुनिश्चित कर सकें कि हम पुस्तक आज ही समाप्त कर लें। कहानी में डेविड को रेगिस्तान में दिखाया गया है और डेविड नाबाल की भेड़ों की रक्षा कर रहा है। नाबाल एक अमीर आदमी है, उसके पास बहुत सारी भेड़े और बकरियां हैं। डेविड उस आदमी की भेड़ों की रक्षा कर रहा है। रेगिस्तान में कौन घूमता है? रेगिस्तान में डाकू वही हैं, यही अपराधी हैं। तो मूलतः ये अपराधी हैं। डेविड नाबाल की भेड़ों को इन अपराधियों, चोरों और वहां मौजूद विभिन्न लोगों से बचा रहा है। दाऊद ने देखा कि नाबाल भेड़ों का ऊन कतर रहा है, और वह कुछ भेड़ों को मार डालेगा और कुछ मांस खा लेगा। इसलिए दाऊद ने नाबाल के पास कहला भेजा, हे, मैं तेरी भेड़ों की रक्षा कर रहा हूँ, अच्छा रहेगा कि हम भी कुछ भेड़े मार डालें और कुछ खा लें। नाबाल कहता है, दाऊद कौन है? और डेविड को उड़ा देता है। वह कहता है, डेविड यहाँ से चले जाओ, और डेविड को धक्का दे देता है। दाऊद अपने लोगों से कहता है, अपनी तलवारें उठाओ, हम नीचे जा रहे हैं और उस नाबाल को बाहर निकाल लेंगे। हम यहाँ इस आदमी के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो डेविड इसके बारे में सचमुच गंभीर हो जाता है, और फिर क्या होता है? पहली कविता में यह इस महिला अबीगैल का वर्णन करता है और यह कहता है, वह एक बुद्धिमान और सुंदर महिला थी। वैसे क्या कथा आपको बाद में आने वाले समय के लिए तैयार कर रही है? क्या डेविड इस महिला से शादी करने जा रहा है? वह बुद्धिमान है और वह सुंदर है, क्या होता है? उसने नाबाल से शादी की है, यह एक समस्या है। उसके नाम का क्या मतलब है? नाबाल का अर्थ है मूर्ख। तो अबीगैल को पता चला कि डेविड उसके पति को मारने आ रहा है। अबीगैल क्या करती है? अबीगैल को हर प्रकार का भोजन मिलता है, और वह भोजन को गधों पर लादकर दाऊद के पास लाती है। तब दाऊद कहता है, परमेश्वर दाऊद के साथ ऐसा व्यवहार करे, चाहे शोक करने से एक भी पुरुष जीवित रह जाए। तब वह उसके चरणों पर गिर पड़ी और बोली, हे प्रभु, दोष मुझ पर ही लगाया जाए। क्या वह अपने पति के लिए अपना बलिदान देती है? क्या आपने कभी किसी महिला को अपने पति की रक्षा के लिए अपना बलिदान देते देखा है? वह ऐसा करती है। यह मुझ पर ही रहने दो, कृपया अपने नौकर को तुमसे बात करने दो। सुनो तुम्हारा सेवक क्या कहता है। मेरा स्वामी उस दुष्ट नाबाल पर ध्यान न दे। वह किसकी बात कर रही है? वह उसका पति है। क्या वह अपने पति को जानती है? वह उस लड़के को जानती है। वह बिल्कुल अपने नाम की तरह है, उसका नाम मूर्ख है। यह महिला, वह बुद्धिमान है और वह सुंदर है। क्या वह जानती है कि उसका पति मूर्ख है? हाँ। क्या कई महिलाओं की शादी ऐसे पतियों से होती है जो मूर्ख होते हैं? मेरी पत्नी से मत पूछो। क्या होता है? क्या वह अपने आप को बलिदान करती है? क्या वह अपने आप को बलिदान करके कहती है, हे दाऊद, सब कुछ मुझ पर पड़े, अपने पति नाबाल को छोड़ दे। क्या यह महिला कुलीन है? फिर डेविड खाना लेता है, पीछे हट जाता है और फिर मुझे उसके साथ कहानी खत्म करने देता है। क्या आप देखते हैं क्या होता है? वह नाबाल के पास वापस जाती है। नाबाल क्या कर रहा है? नाबाल पार्टी कर रहा है, वह नशे में है। क्या आप नशे में धुत आदमी को कुछ कहते हैं? नहीं, जब वह नशे में होता है तो वह उससे बात नहीं करती। जब वह अगली सुबह उठता है और शांत होता है तो वह उसे बताती है कि उसने क्या किया है और यह कहता है, उसका दिल विफल हो गया। वह उससे कहती है, और उसका हृदय विफल हो गया और 10 दिन बाद प्रभु ने उसे ले लिया। 10 दिन बाद यह किसने किया? क्या डेविड ने ऐसा किया? डेविड ने ऐसा नहीं किया, प्रभु ने उसे ले लिया। अब अबीगैल क्या है? वह एक विधवा है। क्या दाऊद उसके पति को मारे बिना उससे विवाह कर सकता है, क्योंकि प्रभु ने उसे ले लिया था? इसलिए डेविड ने अबीगैल से शादी की। वैसे डेविड की पिछली पत्नी मीकल के साथ क्या हुआ था, क्या किसी को यह याद है? हाँ बिल्कुल, वह डेविड के दोस्तों में से एक को दी गई थी, उसके सबसे अच्छे आदमी की तरह। हमने सैमसन के साथ ऐसा पहले देखा है। उसे उसके सबसे अच्छे आदमी को दे दिया गया और अब डेविड अबीगैल से शादी करता है। डेविड को इस क्षेत्र में समस्या होने वाली है। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि डेविड एकदम सही है। जिकलाग और पलिश्तियों में टी डेविड 81-37-82-33। अब दाऊद सिकलक को पलिश्तियों के पास जाता है। यह सुदूर दक्षिण में जिकलाग नामक एक शहर है। यह रास्ते से बाहर है। डेविड वहां नीचे जाता है और वास्तव में पलिश्तियों में शामिल हो जाता है। यह वास्तव में दिलचस्प है। अध्याय 27 में इसका उल्लेख है। तो उस दिन आकीश ने डेविड जिकलाग को दे दिया। तब से यह यहूदा के राजाओं का है। अध्याय 27 श्लोक 6 में वह कथन वास्तव में इंगित करता है, सिकलग तब से यहूदा के राजाओं का रहा है। यहूदा के राजा, क्या इससे पता चलता है कि यह पद राज्य के विभाजन के बाद लिखा गया था? क्या आपको याद है, सुलेमान के बाद राज्य उत्तर और दक्षिण में विभाजित हो गया, लगभग 931 ईसा पूर्व। यह आयत इंगित करती है कि एक शमूएल सुलेमान के समय के बाद लिखा गया था, जब राज्य विभाजित हो गया था। तो ये उसका एक छोटा सा संकेत है। यह कोई बड़ी बात नहीं है और मैं नहीं चाहता कि आप इसे जानें, लेकिन ऐसा होता है। यू डेविड स्पेयर्स शाउल 82-34-84-52। अब डेविड ने शाउल को बख्श दिया। हमें यह जल्दी से करना होगा। शाउल गुफा में चला गया। शाउल क्या कर रहा है? शाउल एक गुफा में कूड़ा ले रहा है। पता चला कि डेविड गुफा में है। डेविड गुफा में है। डेविड को उसका चाकू मिल गया है। शाउल, जब वह ऐसा कर रहा है तो क्या वह पूरी तरह असुरक्षित है? डेविड उसे बाहर निकाल सकता था, फिर भी डेविड ने उसके लबादे का केवल एक छोटा सा टुकड़ा ही काटा। शाउल गुफा से बाहर आता है। डेविड बाहर आता है और कहता है, अरे शाउल, तुम्हें कुछ याद आ रहा है? और फिर वह क्या करता है? क्या तुम्हें याद है कि शाउल कैसे बदलता है? वह कहता है, हे डेविड, मेरे बेटे डेविड, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। डेविड, आप जानते हैं यह सब बकवास है, लेकिन क्या शाउल द्विध्रुवीय है? क्या आप जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ? तो शाउल बाहर आता है, गुफा में हांफते हुए कहता है, डेविड मेरे बेटे। दूसरी बार डेविड रात में अपने लोगों के साथ बाहर गया था और वे एक पहाड़ी पर थे, शाउल नीचे घाटी में था। शाउल का सेनापति कौन था जिसे शाउल की रक्षा करनी थी? अब्नेर। डेविड का सेनापति कौन है? योआब। क्या किसी को याद है कि दाऊद का सेनापति योआब है? कहानी में योआब क्या करता है? योआब लोगों के साथ क्या करता है? दाऊद का सेनापति योआब लोगों को मारता है। शाउल का जनरल अब्नेर वास्तव में एक बहुत अच्छा लड़का है। शाउल का सेनापति अब्नेर है। तो क्या होता है कि दाऊद उस क्षेत्र में आता है जहां शाउल सो रहा था और शाउल का भाला और उसका पानी का जग चुरा लेता है और उसे वापस पहाड़ी पर ले जाता है और कहता है, हे अब्नेर, तुम्हें राजा शाउल की रक्षा करनी चाहिए। अरे शाउल, तुम्हें कुछ याद आ रहा है? और शाउल का भाला और उसका घड़ा चला गया और शाउल ने फिर ऐसा कहा, हे दाऊद, हे मेरे पुत्र दाऊद। वह फिर वैसे ही चला जाता है। डेविड क्या कहते हैं? और यह यहां महत्वपूर्ण पंक्ति है। दाऊद राजा का आदर करता है और वह क्या कहता है? प्रभु का क्या स्पर्श न करें, प्रभु के अभिषिक्त को मत छो। दाऊद वास्तव में सावधान है कि शाउल को चोट न पहुंचे। परमेश्वर को शाउल की देखभाल करनी है। अवसर होने पर भी दाऊद शाउल पर प्रहार नहीं करेगा और भले ही उसके अपने लोग उससे कह रहे हों कि उसे मार डालो, दाऊद ऐसा नहीं करेगा। वह प्रभु के अभिषिक्त को नहीं छुएगा। वी शाउल एंड द विच एट एंडोर 84:53-91। अब अध्याय 28 और यह अच्छा है। यह वास्तव में एक महत्वपूर्ण मार्ग है। एक शमूएल अध्याय 28 में शाउल यिज्रेल की घाटी में पलिश्तियों से लड़ने जा रहा है। यिज्रेल की घाटी 20 से 30 मील चौड़ी है, वह समतल है। प्रश्न, क्या पलिश्तियों को यिज्रेल की घाटी इसलिए पसंद थी क्योंकि वह समतल थी और उनके पास रथ थे? शाउल पलिश्तियों के विरुद्ध जाने से बहुत डरता है। वह जानता है कि इनमें से एक बार उसकी हार होगी, इसलिए वह यहोवा के पास जाता है और यहोवा से पूछता है, परंतु यहोवा उसे स्वप्न के द्वारा वा उरीम और तुम्मीम के द्वारा उत्तर न देगा। क्या मैंने उरीम और तुम्मीम के बारे में कोई बात की है? लोगों का मानना है कि उरीम और तुम्मीम दो छड़ियों की तरह थे जिन्हें पुजारी ने अपनी छाती की प्लेट में रखा था। छाती की प्लेट एक थैली की तरह थी। याजक ने उरीम और तुम्मीम को निकाल लिया और उन्हें नीचे फेंक दिया गया, और उरीम और तुम्मीम याजक के माध्यम से परमेश्वर से उत्तर देते थे। यह बहुत कुछ डालने जैसा था। लोगों का मानना था कि लकड़ियां दो उत्तर दे सकती हैं, यदि दोनों का रंग एक ही हो तो हाँ होगा, यदि वे दोनों दूसरे रंगों में आते तो ऐसा होता नहीं, यदि वे मिश्रित रंग में आते तो यह ईश्वर की ओर से कोई उत्तर नहीं होता। तो आपको उरीम और तुम्मीम से तीन उत्तर प्राप्त करने होंगे। ये गोटियां वे डालेंगे, एक हाँ उत्तर, एक नहीं उत्तर और ईश्वर की ओर से कोई उत्तर नहीं। दूसरे शब्दों में, ईश्वर उत्तर नहीं दे रहा है। इसलिए उन्होंने उरीम और तुम्मीम फेंके और परमेश्वर की ओर से कोई उत्तर न मिला। तो शाउल क्या करता है? मुझे इसके बारे में कुछ पता लगाना है कि क्या होने वाला है। तो वह इस चुड़ैल एंडोर की चुड़ैल के पास जाता है। वह इस डायन के पास जाता है और डायन उससे कहती है, चलो मैं कहानी सुनाती हूँ, जल्दी से ऐसा करो। वह डायन के पास जाता है और वह मृतकों से संवाद करती है। वैसे क्या हमारे समय और उम्र में कोई ऐसे लोग हैं जो मृतकों के साथ संवाद करते हैं? वे किस शहर से हैं? तो यह महिला कहती है कि वह मृतकों से बात कर सकती है, इसलिए शाऊल कहता है, शमूएल को ऊपर लाओ। तभी महिला अचानक चौंक जाती है। वह घबरा जाती है और कहती है, पवित्र गाय, वहां सैमुअल है, और वह सैमुअल को देखती है। जैसे ही वह सैमुअल को देखती है तो समझ जाती है कि ऐसा करना उसके बस की बात नहीं है। सैमुअल ऊपर आ रहा है। वह तब चिल्लाती है और कहती है, तुम शाऊल हो, तुम शाऊल हो, तुमने मुझे धोखा दिया, तुम शाऊल हो। तब शमूएल सीधे शाऊल को संबोधित करता है और शाऊल पूछता है, भविष्य में क्या होने वाला है? शमूएल ने उत्तर दिया, शाऊल, तूने मेरा पालन पोषण करके मुझे क्यों परेशान किया है? क्या शमूएल जहां था मृत्यु के दूसरी ओर अधिक खुश था? यह मार्ग इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के दूसरी ओर क्या है? यह परिच्छेद 1 शमूएल 28 आपको उसमें से कुछ बताता है। सैमुअल कहता है, तुमने मुझे वापस लाकर मेरा पालन पोषण करके मुझे परेशान क्यों किया? शाऊल कहता है, पलिश्ती मेरे पीछे पड़े हैं और वे मुझे मार डालेंगे और मैं जानना चाहता हूं कि क्या होगा। शमूएल कहता है, कोई बात नहीं शाऊल, तू और तेरे बेटे कल मेरे साथ रहेंगे। शाऊल कहता है, हाँ, हम सैमुअल होंगे, समस्या क्या है? सैमुअल कहाँ है? मृत। इसलिए शाऊल यह जानकर युद्ध में चला गया कि वह मरने वाला है। अब समस्या क्या है? क्या मृत्यु के उस पार के लोग जानते हैं कि इस दुनिया में क्या चल रहा है? क्या शमूएल को पता था कि शाऊल के जीवन में क्या चल रहा था? क्या मृत शमूएल को पता था कि शाऊल के जीवन में क्या चल रहा है? सैमुअल को न केवल पता था कि क्या हो रहा है, बल्कि सैमुअल उसे यह बताने में भी सक्षम था कि अगले दिन क्या होगा, कि वह मरने वाला है। आपसे मेरा कथन यह है, जब लोग मरते हैं तो क्या उन्हें पता होता है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है? आपके दादा, आपकी दादी, यहाँ तक कि आपके माता पिता जिनका निधन हो चुका है, क्या उन्हें पता है कि इस दुनिया में क्या चल रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि इस अनुच्छेद के आधार पर सैमुअल को अच्छी तरह पता था कि क्या हो रहा है। उदाहरण के लिए, मुझे लगता है कि मेरे पिता का कई साल पहले निधन हो गया था। मुझे लगता है कि वह जानता है कि मैं अब क्या कर रहा हूँ, शायद सोच रहा है, वह बच्चा अभी भी इसे ठीक से नहीं कर पा रहा है, लेकिन फिर भी आपको सावधान रहना होगा। मैं जो कह रहा हूँ वह यह है कि दूसरी तरफ के लोग हैं। मैं इसके बारे में कैसे सोचता हूँ? क्या किसी को द मैट्रिक्स फिल्म याद है? पुराने दिनों में उनके पास यह फिल्म थी, द मैट्रिक्स नामक फिल्म, जहां दो समानांतर दुनियाएं हैं। मैं कह रहा हूं कि दो दुनियाएं हैं और दोनों दुनियाएं एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करती हैं। मुझे लगता है ऐसा ही कुछ चल रहा है। तो मैं जो सुझाव दे रहा हूं वह यह है कि इस अनुच्छेद के आधार पर मृत्यु के दूसरी तरफ के लोग मूल रूप से जानते हैं कि यहां क्या हो रहा है। क्या चुड़ैले लोगों को मरे हुओं में से वापस ला सकती हैं? नहीं, यह चुड़ैल सैमुअल को वापस नहीं लाई। सैमुअल भगवान के पास से वापस आया, इस चुड़ैल के पास से नहीं। मरे हुए लोगों को इस जिंदगी का एहसास होता है। इसका बहुपीढ़ीगत अर्थ यह है कि आपके दादा दादी और परदादा परदादा इस बात से अवगत हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। क्या इससे चीजों के बारे में आपके सोचने का तरीका बदल जाता है? यदि आप जानते हैं कि लोगों को पता है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, तो क्या इससे चीजें बदल जाती हैं? मुझे लगता है कि ऐसा होता है, यह सोचने वाली बात है। वैसे भी बहुत हो गया चुड़ैलो, चलो यहां से बाहर निकलें, अपनी झाड़ू उठाएं और चलें। यह डॉ टेड हिल्डेब्रांड हैं जो अपने पुराने नियम के इतिहास साहित्य और धर्मशास्त्र पाठ्यक्रम व्याख्यान 23 में एक सैमुएल की पुस्तक शाऊल के निधन और राजा डेविड की प्रारंभिक कहानियों पर चर्चा कर रहे हैं। डेनियल किम द्वारा प्रतिलेखित टेड हिल्डेब्रांड 2 द्वारा रफ संपादित।